जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब लोग गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हिताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना माई की, श्री गिरि गोवर्धन की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री वृंदा देवी की, श्री उज्जवल मधुमंगल की, श्री ललिता विशाखा की, लाडली लाल की, श्री बरसाना नंदगांव धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको यहाँ पर निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ पर 108 उपनिषद, 18 पुराण, सारे पवित्र पर्वत, सारे पवित्र नदियाँ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान, हनुमान जी, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, भारद्वाज मुनि, व्यासदेव, सुखदेव, ऐसे सारे ऋषि मुनि एक साथ उपस्थित रहते हैं। जब हम किसी पवित्र स्थान में जाते हैं तो उस समय एक समय पर एक नदी में स्नान कर सकते हैं, है ना। लेकिन कथा में बैठकर कथा सुनना, यानी आप सभी तीर्थों में और सभी नदियों में एक ही साथ स्नान कर रहे हैं, ऐसा भाग्य है। और कथा में जब एकाग्र होकर कथा सुनते हैं तो जितने भी महाजन यहाँ उपस्थित हैं, यानी नारद मुनि, अंगिरा मुनि, सब आ जाते हैं, हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका भी अस्तित्व का संग प्राप्त हो जाता है। इसलिए हरि कथा जहाँ भी होती है वो सबसे सुरक्षित, दिव्य दृष्टि से सुरक्षित, आध्यात्मिक दृष्टि से सुरक्षित जगह है, क्योंकि उसमें मृत्यु भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके संग में, सब धाम के संग में, नदियों के संग में, सबके संतों के संग में, कृष्ण भगवान के संग में उपस्थित रहना, जीवित रहना, मृत हो जाना, सभी सफल हैं, ऐसा भाग्य है। तो ऐसे परम पावन श्री कृष्ण चरित्र का हम अभी वर्णन करने का प्रयास करेंगे आप सब लोगों की प्रार्थना से और कृपा से, और सभी वरिष्ठ जनों की मैं कृपा चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, दशम स्कंद में 33वें अध्याय में 37वां, अनुग्रहाय भूतानां मानुषिम देहम आस्थितम भजते तादृशी ही क्रीड़ायाः श्रुत्वा तत्परो भवेत। इतना सुंदर श्लोक है कि इस बार पूरे साल में मैंने जन्माष्टमी में जितने भी लेक्चर दिए सभी में ये श्लोक बताया, इतना सुंदर श्लोक है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि सभी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिसका श्रवण करने से सभी जीव तत्पर और सतर्क हो जाते हैं, दे बिकम वेरी अलर्ट। और क्या लीला करते हैं, नाचते हैं, चोरी करते हैं, दही की भिक्षा मांगते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, भक्तों की चाकरी करते हैं, ग्वाल बालों के जूठन खाते हैं, हाँ हाँ करके मांगते हैं, हाथों से छीनते हैं, छीना झपटी करते हैं और कहते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब संपन्न करने के लिए वे अपने धाम को यहाँ पर अवतरित करते हैं, उसकी भी कथा बताऊंगा। और प्रभु चाहते हैं इन सब करने से, प्रभु चाहते हैं कि बिना परिश्रम सहज ही सभी जीवों को बिना विलंब भगवान का संग प्राप्त हो जाए, जीव मेरे समीप आ जाए, इस भाव से वो ये सब करते हैं। इसलिए भगवान का जो धाम है वो अमोघ अमोघ वस्तु है और धाम वास, धाम में निवास करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ऐसा भगवान की अद्भुत लीला है। और उसमें भी भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। हम सबका जन्म जो है साधारण जन्म है, कोई किसी का जन्म के पहले संस्कार होता है, किसी का नहीं होता है, और जिसका भी जन्म होता है सबकी मृत्यु होती है। लेकिन भगवान का जन्म और भगवान का कार्य या भगवान की लीलाएं, इसको दिव्य कहा गया है। दिव्य यानी कि जो त्रिगुणातीत है, त्रिगुण यानी सत्व रज तम, और भगवान जो है वो इन तीनों के परे विशुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, इसलिए उनको त्रिगुणातीत कहा गया, त्रिगुण के अतीत यानी उसके परे हैं भगवान, इसलिए उनका जन्म भी उसके परे है, हमारे कल्पना के बाहर है। इस प्रकार से वो अवतार लेते हैं, इसका प्रकट हो जाते हैं, हम तो जन्म लेते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरे सौंदर्य के साथ, सब कुछ ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हुए भगवान अवतरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो कार्य करते हैं, केवल उनके कार्य मात्र सुनने से हम सब दिव्य हो जाते हैं, कम से कम उस समय के लिए क्यों ना हो, हम सब भी अगर एकाग्रता से मग्न होकर भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उस समय तक हम सब लोग भी त्रिगुणों के परे चले जाते हैं। जिस गुण में भगवान स्थित हैं, जिसमें भगवान का संग उपलब्ध है, जिसमें भगवान का आश्रय उपलब्ध है, उस गुण में हम सब लोग स्थित हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी विनती यह है कि जब भगवान का चरित्र वर्णन होता है तो जीव को सब भूल जाना चाहिए, सब कुछ भूल कर उनके कथाओं के श्रवण मग्न होना चाहिए, क्योंकि उनकी कथा वे स्वयं है, उनकी लीला जो है वो उनमें और लीलाओं में कोई भेद नहीं है। जब लीला कही जाती है तो भगवान के व्यक्तित्व का अनुभव होता है, भगवान के सानिध्य का, आश्रय का अनुभव होता है। और हमारे जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी चिंता हो, कितनी भी समस्याएं हो, वो सब भगवान की लीला सुनकर गायब हो जाते हैं। हम लोग केवल कथाओं में ये बात सुनते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो हम इस बात को याद नहीं रखते हैं। लेकिन आप कभी प्रयोग कर सकते हैं, कभी संकट आएगा, कभी कष्ट आएगा, चिंता आएगी, तुरंत आप भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, उसको पढ़िए या भगवान के नामों का जप कीजिए। आपको अनुभव होगा कि हम समस्याएं वही है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, इसलिए उनको दिव्य कहा गया है। दिव्य यानी जो आपको अपनी स्थिति से ऊपर खींच सकता है, आपको त्रिगुणातीत कर सकता है, उसको ही दिव्य कहते हैं। और एवं यो वेति तत्वतः, जो ये समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि ये दिव्य है, ये जिसके समझ में आया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, ऐसे व्यक्ति को शरीर छोड़ने के बाद में दोबारा इस दुनिया में नहीं आना पड़ता है। भगवान उस व्यक्ति को इतने प्रिय मानते हैं, वो इतना प्रिय हो जाता है भगवान के लिए व्यक्ति, कि वो भगवान इंतजार ही कर रहे हैं, जब तक है तब तक भी दिव्यता के आधार पर जी रहा है, और जैसे ही समाप्त होगा उसका शरीर, मैं तुरंत अपने धाम में उसको ले जाऊंगा। त्यक्त्याद्विहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन, कभी नहीं होगा उसको जन्म, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आश्वासन है। इसलिए भगवान का लीलाओं का श्रवण करने का भाग्य प्राप्त होना, ये अनंत जन्मों के पुण्य का फल है। कोई भी व्यक्ति ऐसे सहजता से भगवान की लीलाओं में श्रवण करने के लिए नहीं आ सकता है, उसके लिए बहुत पुराने जन्मों का पुण्य, किसी अनजान भाव में की गई वैष्णवों की सेवा, पता नहीं लेकिन अनजाने में हो गई है, ऐसा हमारे साथ में पूंजी होगी तो ही इस जन्म में भगवान का नाम हमारे कानों पर पड़ेगा, भगवान की लीलाओं का परिचय होगा। इसलिए भारतवर्ष का जन्म जो है भाग्यवान कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जन्म लेने से ही, हमने कभी बचपन में महाभारत नहीं पढ़ा था, रामायण नहीं पढ़ा था, लेकिन हम बचपन से ही सब रामायण महाभारत जानते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा है भारत का, बढ़ते बढ़ते स्कूल जाते जाते सब कुछ सुनाई पड़ता है ऑटोमेटिकली। तो ये अनंत जन्मों का भाग्य है हमारा, और उसमें भी अगर रुचि पैदा होना है उसके अंदर, उसके भी अगर दिल लगना है उसके अंदर, तो वो और परम भाग्य की बात है। वो कैसे होता है, जब किसी संत के संघ में हम आ जाते हैं और किसी संत की सेवा प्राप्त करते हैं, तो उनकी कृपा से ये सब लगन लग जाती है। भगवान ने सारे अपने जो रहस्य की चाबी है ना, वो संतों के पास देकर रखी है, पूरा उनका खजाना जो है उसका चाबी उनके पास देकर रखा है, और जिसको वो देना चाहते हैं वो उसको देते हैं, जो उनका शरण लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनको वो चाबी खोल देते हैं। इसलिए भगवान खुद को भी अपने आप को अर्पण नहीं कर सकते हैं, संतों के माध्यम से अपने आप को देते हैं, किसी को देना है तो, ये संतों की महिमा है। इसलिए संत भगवान से भी ऊपर हैं, क्योंकि भगवान भी उनकी सेवा करते हैं। महाभारत के राजस्व यज्ञ में उन्होंने अपने पीताम्बर से सब चरणों, लोगों के चरण पहुंचे थे धोने के बाद में। पीताम्बर, आप क्या समझते हैं पीताम्बर को, पीताम्बर इतना दिव्य वस्त्र है, उस पीताम्बर से संतों के चरण धोकर उन्होंने पहुंचे थे, इतना संतों को मानते हो। एनीवेज, तो आज हमारा विषय कृष्ण जन्म का है, और देखिए कितनी रोचक बात यह है कि कृष्ण जन्म, कृष्ण चरित्र को शुरू करने के लिए 9 स्कंदों के बाद में उसका आगमन होता है ना, शुरू में भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं किया है। 9 स्कंदों में क्या वर्णन किया है, 9 स्कंदों में भगवान का गौरव किया गया है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियाँ, भगवान की अनंत अवतारों की लीलाएं, भगवान के भक्तों का चरित्र। तो इससे क्या होता है कि एक भूमिका बनती है कि हम किसके बारे में सुनने जा रहे हैं, वो कौन है। हो सकता है शुरू में सुनेंगे कि वो माखन चोरी कर रहे हैं, हमको लगे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो सामान्य व्यक्ति, लेकिन जब उनका पूरा गौरव सुनेंगे और बाद में सुनेंगे कि यही व्यक्ति बालक बनकर ग्वाल बालों के घर में माखन चुरा रहा है, तो उसका महत्व हम समझ सकते हैं। इसलिए 9 स्कंदों का तैयारी और उसके बाद दशम स्कंद का वर्णन, तब तक दशम 9 स्कंद का जब तक श्रवण नहीं करते हैं तब तक दशम स्कंद सुनेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा, उसका रहस्य, उसका गुपित और उसका सार नहीं समझ में आएगा। तो इसमें ना 2 प्रवाहों की कहानी है, जैसे यदु को जब भी उसके पिताजी ने कहा था ययाति ने कि मुझे यवन दे दो आपका, क्योंकि उसको शाप मिला था बहुत ज़्यादा भोग लेने से कि तुम्हारा यवन नष्ट होकर तुम वृद्ध हो जाओगे, तो वो अपने एक एक पुत्र के पास गया, क्योंकि उस शाप दिया गया उसको कि चलो अभी आप वृद्ध होने वाले हो तो आपको अगर माफ़ी चाहते हो तो आप अपने पुत्रों के पास जाओ और उनको पूछो कि वो उनका यौवन हमें दे सकते कि नहीं दे सकते। तो एक एक पुत्र के पास आते तो उसमें यदु एक पुत्र था उनका, तो यदु ने मना कर दिया उनको, क्योंकि यदु को ये ज्ञान था कि मेरे ही वंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो मैं हमारा यवन दे दूंगा तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा। तो यदु का वो क्या कहते हैं उसको, डिसअबीडियंस नहीं था, अवज्ञा नहीं थी, वो भविष्य की अनुभूति के अनुसार उन्होंने लिया हुआ निर्णय था। तो वो यदु के आगे जाकर फिर उस वंश में देवमीड आते हैं, देवमीड राजा, और इनमें से दो प्रवाह शुरू हुए हैं। और भगवान की कथा के दो प्रवाह हैं भगवान के अवतार के। हाँ, तो देवमीड राजा के दो पुत्र हुए, एक क्षत्रिय पत्नी थी उनकी, उनके द्वारा शूरसेन का जन्म हुआ, जिसके द्वारा वसुदेव कुंती वगैरह का जन्म हुआ, और एक पत्नी थी उनकी वैश्य यानी कि अम्बस्त यानी कि वो ग्वाल बालों की एक जाति है, उनसे द्वारा उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम था परजन्य महाराज। और परजन्य महाराज जो थे कहते हैं कि वो सद्गुणों के सागर थे, उनके गुण इतने दिव्य थे कि पहले तो उन्होंने नंदगांव में एक प्रेम तड़ाक तीर्थ है, उन्होंने वहां कई साल तक तपस्या किया। फिर उसके बाद में वहां पर केशी राक्षस का आतंक शुरू हुआ, इसलिए वो अपने लोगों को लेकर गोकुल चले गए और वहां रहने लगे। लेकिन उनके अनंत समृद्ध सद्गुणों का दर्शन करते हुए उग्रसेन महाराज इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने गोकुल का पारा पूरा जमीन उनको दान में भेंट में दे दिया और राजा बना दिया उनको, परजन्य महाराज को। कहते थे वो ध्रुव की तरह प्रसिद्ध थे, पृथ्वी की तरह गौरवशाली थे, भीष्म की तरह शक्तिशाली थे, शिव की तरह महान थे, ब्रह्मा की तरह आदरणीय थे, विष्णु की तरह शक्तिशाली थे। उनका बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन सभी लोगों ने उनका आश्रय लिया, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी लोगों ने उनका आश्रय लिया। उन्होंने धन में ज्ञान में सबको पार कर दिया, लेकिन उनका धन जो था सबको उन्होंने बांट दिया, दूध और रत्न इनसे सभी वैश्यों को उन्होंने मालामाल कर दिया। उनके इस सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व के कारण उनको वरियस ये नाम दिया गया, वरियस यानी द मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल। और ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य इससे वो अत्यंत समृद्ध थे। तो उनको उन्होंने जब तपस्या किया था प्रेम तड़ाक तीर्थ में नंदगांव में, तो उनको भगवान ने दर्शन दिया श्री विष्णु ने और कहा कि आपको 5 पुत्र होंगे और बीच वाला जो पुत्र होगा उससे मैं स्वयं जन्म लूंगा, उसके बाद में फिर वो गोकुल आए। यथावकाश उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, नंदन और सुनंद, सुनंद और नंदन आखिरी वाले, नंदन चाचा कहते हैं उनको। और एक समय ऐसा आया कि अपने सुंदर पुत्रों को सुंदर गुणों से सुशोभित होते हुए देखते हुए उन्होंने सोचा कि अभी मुझे वानप्रस्थ लेने का समय आ गया है, तो उन्हें बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया और उपनंद जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके, उनको बड़े ही सुंदर समारोह में राज तिलक राज मुकुट पहना दिया, राज दंड दे दिया, रॉयल इंसिग्निया वाज ऑफर्ड टू हिम, बड़े ही सुंदर समारोह में उनको राजा बना दिया। अभी उसके बाद एक अद्भुत बात हो गई, सब लोगों ने जय जयकार किया उपनंद महाराज का, उनके गुणों का वर्णन किया, भाटों ने, वंदी और मागध सभी गीत गाने वाले लोगों ने राजा का गुणगान किया। और अचानक उपनंद बाबा महाराज से उन्होंने अपने मझले भाई के ऊपर नजर स्थिर की और बहुत देर तक उसको वो निहारते रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसा क्या हो रहा है। और जब वो अपने बिछड़े भाले भाई को निहार रहे थे उसकी आंखों से अश्रू बह रहे थे, सब लोग स्तब्ध हैं सभा में। और उसके बाद वो अचानक अपने भाई के पास जाते हैं, उसको गले लगाते हैं, आलिंगन देते हैं और दोनों प्रेम के अश्रुओं की धारा एक दूसरे पर बहाते हैं, उनको नहलाते हैं एक दूसरे को। और अचानक अपना मुकुट उतारकर अपने भाई के ऊपर रखते हैं, राजदंड उसको दे देते हैं और अपने हाथ से राज तिलक कर देते हैं। और सब लोग कुछ समय के लिए एकदम अचंभित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तालियां बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, गौरव करते हैं। और उसी समय आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। उस समय उपनंद महाराज कहते हैं कि पिताजी को, महाराज आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे राजा बनाया, योग्य बनाया, लेकिन मेरी ये तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मुझसे भी अनंत प्रकार के गुण, अनंत गुणित गुण मेरे ये भाई में है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे राजा बना दूँ। अभी होता है कैसे भौतिक दुनिया में, सब लोग तो जो उपस्थित राजा है उसको मारकर राजा बन जाते हैं। हाँ, कंस ने भी वही किया था, पिताजी को जेल में डाला, खुद राजा बन गया था। इसलिए इन लोगों का इतिहास सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों का वर्णन नहीं सुनाई पड़ता है। तो कैसे हमें प्रेरणा मिले, कैसे आदर्श प्राप्त मिले समझे, इसलिए इन कथाओं को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और उन लोगों को जैसा चरित्र एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। तो नंद महाराज इतने गदगद हो गए अपने भाई के प्रेम से, उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पर ये राज तिलक स्वीकार करता हूं, अगर आप मेरा मेरे लिए निरंतर सलाहकार बन के रहेंगे तो मैं राज तिलक स्वीकार करता हूं। तो दोबारा गले लगाया, और इसका प्रमाण ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि भाई तिलक प्राप्त हुआ तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात करनी चाहिए मन में कुछ, और ऐसा नहीं है। उसके आगे जितने निर्णय ले गए वो सब उपनंद महाराज को पूछ के ले गए, जैसे गोकुल से नंदगांव लौट के आना बहुत बड़ा निर्णय था, वो डिसेटलमेंट फ्रॉम गोकुल एंड गोइंग बैक टू नंदगांव, वो निर्णय उपनंद बाबा ने दिया था कि अभी गोकुल बहुत क्या कहते हैं उसको असुरक्षित हो गया है, कंस के आक्रमण से बार बार लौट राक्षस आते हैं, इसलिए हम अभी वापस चलते नंदगांव। तो ये जो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, फिर उपनंद महाराज ने सभी सभाओं सभा को क्या कहते हैं उसको एड्रेस किया है, बहुत सुंदर बात कही, आप लोग सहन से सुनिए। वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को क्या कहते हैं उसको प्रेम की आवश्यकता होती है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है दुनिया में अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ सुंदर कुरूप प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको प्रेम की जरूरत नहीं है? कोई ऐसा प्राणी जिसको प्रेम की जरूरत नहीं है? सबको प्रेम की जरूरत है। और वो कहते हैं कि प्रेम कब प्रकट होता है, जब हृदय में अच्छे गुण होते हैं, जब अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं तो प्रेम उत्पन्न हो सकता है। और अच्छे गुण किस पर निर्भर होते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फिटनेस, आपके आध्यात्मिक जो अंदर की शक्ति है जितनी वो विकसित है उतने आपके अंदर अच्छे गुण प्रकट हो सकते हैं। और वो कहते हैं, देखो डेवलप कर रहे हैं अपना विचार, वो कहते हैं कि अच्छे गुण जो है वो आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर होते हैं जो आपके अंदर है, और मेरा भाई जो नंद है वो ऐसे आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए मेरे से अच्छा वही इस राज्य को चला सकता है और सबके हृदय पर राज्य कर सकता है, सबके हृदय को अपने प्रेम से जीत सकता है, ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैंने उसको ये राज्य सौंप दिया है। और कहते देखो मैं जब ये कह रहा हूं, देखो कैसे सब लोगों की आंखें नंद बाबा के चेहरे पर टिकी हुई है, वो उनके सौंदर्य को नहीं देख रहे हैं, उनके आध्यात्मिक जो उनका वैभव है उससे प्रभावित होकर सब उनको देख रहे हैं। इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि ये भगवान नारायण की इच्छा है कि नंद मेरा भाई राजा बने। तो सब ने जय 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 जयकार किया, जय नंद जय नंद। और उसके बाद परजन्य महाराज वन में चले गए तपस्या करने के लिए, वानप्रस्थ जीवन को जिताने के लिए। जाते जाते उन्होंने अपने सारे पुत्रों को एक क्या लिया, एक लेक्चर लिया, पार्टिंग मैसेज। हाँ, उन्होंने कहा बहुत सुंदर सा बात, छोटी छोटी बातें कही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। कहते हैं भय का कारण क्या है, भय का कारण भौतिक आसक्ति है, दुनियादारी में आसक्ति, इससे भय उत्पन्न होता है। आश्रय किसका होना चाहिए, केवल परम भगवान का आश्रय होना चाहिए। और बहुत सबसे मूल्यवान और सबसे गौरवशाली वस्तु दुनिया में क्या है, वो कहते हैं भगवान के भक्त, इससे ज्यादा मूल्यवान वस्तु इस दुनिया में कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा आनंदमय वस्तु क्या है, वो भगवान का प्रेम, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त है वो सबसे ज्यादा आनंदमय होता है। ऐसे कहकर नंद महाराज को सबको छोड़कर परजन्य महाराज वन में चले गए। उसके बाद में आप जानते हैं कि सूर्य देव ने अवतार लिया वृषभानु के रूप में, उनके 8 भाई, 4 बड़े 4 छोटे, बीच में वृषभानु महाराज। ये नंद महाराज के बड़े अच्छे मित्र थे, और नंद महाराज का विवाह सुमुख गोप की कन्या, इनका नाम था यशोदा, उनका जो रिश्ता है वो वृषभानु महाराज ने नंद महाराज के लाया था। मेहराना नाम का गांव है नंदगांव के पास में है, 5 और 3 8 किलोमीटर दूर है, वहां पर यशोदा का जन्म हुआ था। कहते यशोदा जहां वो थी केवल उसके पास होने से लोग आनंद का अनुभव करते थे, जीवन में यशस्वी हो जाते थे। वो अपने प्रेम से सभी रिश्तेदारों को नियंत्रित करती थी, मतलब स्वभावतः ही लोग उसके वश में हो जाते थे, और जहां पर वो रहती थी सबको यश प्राप्त होता था। जो भी जिसने भी उसका दर्शन किया उस पर परम सद्गुणों का वर्षा हुआ और सुंदर गुणों की प्राप्ति हुई। नंद महाराज का और यशोदामाई का विवाह हुआ और वो नंदगांव में बसे। इतना राज्य को, राज्यवासियों को, प्रजावासी प्रजा को नंद महाराज प्रिय हो गए। सब लोग उनको इतना सराहते थे। हाँ, प्रेम प्रेम राजा के ऊपर प्रेम होना अभी हमको पता नहीं है क्या होता है। वो नोबडी लव्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स टुडे, बट उस जमाने में राजा ये सब व्यक्तियों का प्रेम का विषय होता था। जैसे हम अपने बालकों के विषय में चर्चा करते थे, वैसे राजा के विषय में घर में चर्चा हुआ करती थी। राजा के लिए लोग प्रार्थना करते थे, उसके लिए यज्ञ किया करते थे, उसके लिए आशीर्वाद दिया करते थे, उसका हमेशा शुभ चिंतित करते थे। तो ऐसा सुंदर वातावरण नंदगांव में था, लेकिन फिर भी एक दुख था कि उनको बालक संतान नहीं हो रही थी। तभी देखिए नंद यशोदा के बीच में संवाद हो रहा है। नंद बाबा कह रहे हैं मुझे दिव्य पुत्र की जरूरत है, और ये सब जो हमारे पुरोहित हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो सब जो भट्ट जी हैं, वो सब लोग कर्म कांड कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है ये कर्म कांड की वजह से दिव्य पुत्र नहीं होने वाला है। और ये मुझे ना ये सब जो कर्मकांडी रीति रिवाज को कर रहे हैं, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे मुझे दिव्य पुत्र नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा दिव्य पुत्र लेने प्राप्त करने की जो इच्छा है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी अगर ये कर्मकांड चलते रहेंगे, तो ये कर्मकांड बंद करने पड़ेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मुझे स्वप्न में और जागृति में एक दिव्य बालक का दर्शन होते रहता है, उसकी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें हैं, उसका सांवला रंग है। आप सब लोग चिंतन कीजिए जो मैं बोल रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। और वो हमेशा मैं देखता हूं कि मेरी मतलब आपकी यशोदा मैया, यशोदा के आपकी गोद में मैं खेलते हुए उसको देखता हूं, मुझे पता नहीं चलता कि ये सत्य है कि स्वप्न है। बताओ यशोदा कि ये आपका बालक है, और क्या ऐसा बालक आपके गोद में आपके गर्भ में है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। यशोदा देवी कह रहे हैं कि देखो स्वामी, आप सब ऐसे क्या कहते हैं उसको ना, अकल्पनीय अप्राप्य यानी कि डिफिकल्ट टू अचीव, ऐसे सब इच्छाओं से आप विरक्त हो जाइए, ये सब आपका स्वप्न है। आप अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए, ऐसे स्वप्न मत देखा कीजिए। तो नंद महाराज कह रहे हैं देखो मैं मेरे मन को नियंत्रित करूंगा, लेकिन मैं कुछ भी करने पर भी ये बालक का दर्शन मुझे होते रहता है, तो क्या करूं मैं? और मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है कि नारायण भगवान मेरी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे, जैसे उन्होंने पहले भी किया है। यशोदा कहती है कि काम करते हैं, आपको भी दिव्य बालक प्राप्त करने की इच्छा है, मुझे भी ऐसे दिव्य बालक प्राप्त करने की इच्छा है, क्योंकि यशोदा को भी ऐसे सांवले रंग के दिव्य बालक का दर्शन बार बार होता था। तो यशोदा कहते चलो हम द्वादशी व्रत करते हैं। तो दोनों राजी हो जाते हैं उन्होंने, और उस समय कहते हैं कि जैसे ही द्वादशी व्रत करने का निश्चय उन्होंने किया, निर्णय लिया, उस समय सभी देवताओं ने आकाश में दुंदुभियां बजाई, बहुत सुंदर ध्वनि किए, शंखनाद किया, दुंदुभी नाद किया, भेरी नाद किया, और वो सब जगह फैल गया। उस समय उसके बाद में एक साल तक नंद बाबा यशोदा ने द्वादशी व्रत किया, और द्वादशी व्रत करने से उनको ऐसा दिव्य बालक प्राप्त करने की इच्छा और द्विगुणित हो गई, और त्रिगुणित हो गई, अनंत गुणित हो गई। तो द्वादश व्रत के अंत में दोनों के स्वप्न में नारायण भगवान ने दर्शन दिया और कहते हैं कि आप क्यों दुख कर रहे हो? जिस बालक को आप बार बार दर्शन कर रहे हो वो बहुत ही जल्द आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाएगा, और पूरे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, इस कल्प में, यानी एक कल्प के 43,20,000 ईयर होते हैं एक कल्प के, जिसमें चार युग होते हैं। तो कहते पूरे कल्प में ये भक्ति फैलाएगा बालक, और आप लोग पुराने जन्म में द्रोण और धारा थे, इस जन्म नंद और यशोदा बनकर आए हैं, आपने बड़ी तपस्या की है, इसलिए इसके फल के प्रति स्वयं नारायण इस बालक के रूप में आप में जन्म लेंगे। ब्रह्म को भी इस बालक का दर्शन नहीं होता है, लेकिन ये दिव्य बालक आपका पुत्र बनकर आपके घर पर आएगा। फिर नंद और यशोदा दोनों स्वप्न में से जगे, नींद से उठे, और आनंद के अमृत के सागर में डूब गए। ये विचार करके दोनों ने कंफर्म किया, आपको भी क्या स्वप्न आया था? मुझे भी वही स्वप्न आया था। आनंद के सागर में डूब गए कि उन्होंने क्या देखा, तो श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि द रिलेशनशिप ऑफ द लॉर्ड हैज टू बी विथ लव, भगवान के साथ में संबंध केवल प्रेम का ही होना चाहिए, बाकी वो मांगना उनसे ये चाहिए वो चाहिए, दुख से दूर करो, राजा बनाओ, चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये सब जो बातें हैं, इससे भगवान का रिश्ता नहीं बनता है। भगवान का रिश्ता केवल प्रेम और भक्ति से प्राप्त होता है, ऐसे श्रीमद् भागवत में लिखा है। इस प्रकार से नंद यशोदा का जो आसक्ति थी और जो क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिंग, क्या कहते हैं लॉन्गिंग को, तीव्र इच्छा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई उस बालक को प्राप्त करने लगे। एक दिन एक तपस्वी लगने वाली औरत स्त्री नंद भवन में आई, उसके साथ एक छोटा सा बालक था, बहुत क्या कहते हैं चब्बी, हाँ गुटगुटी कहते हैं मराठी में, हाँ मतलब खाते पीते घर का ऐसे जोरदार। तो सब लोगों ने पूछा, अरे मैया आप कौन हो, क्या आप योग माया हो स्वयं, और ये आपके साथ बालक कौन है? तो माता कहती है मैं पूर्णमासी हूँ। पूर्णमासी कौन है? ये शंकर जी की पत्नी है, भवानी देवी। इन्होंने पूर्णमासी गोपी के रूप में ब्रज में प्रवेश किया है, ब्रज लीला में उनका सहभाग है, और आगे जाकर ये यशोदा रोहिणी आदि बड़ी बड़ी गोपियों की गुरु बनी है, चीफ एडवाइजर एंड गुरु ऑफ ऑल द गोपीज। मैं तपस्विनी हूँ मेरे बचपन काल से, और मैं भविष्य में देख सकती हूँ, मेरे तपस्या के वजह से भूत भविष्य वर्तमान को देख सकती हूँ। ये बालक जो है मेरे साथ वो मधुमंगल है, ये कृष्ण का सखा बना है। आगे जाकर इसके गुण इतने दिव्य है कि नारद मुनि से इसके गुण मिलते जुलते हैं, और हम दोनों हमारे तपोबल से उसी उम्र के रहते हैं, हमारी कितनी भी उम्र हो जाए हम वैसे ही रहते हैं, वार्धक्य यानी जरा हमें बाधित नहीं करती है, क्योंकि हमारे पास जो तपस्या करने से ज्ञान और अनुभूतियां प्राप्त हुई है उससे हम वैसे ही रहते हैं। साधुओं का एक लक्षण है अनंत लक्षण में कि वो कितने साल मिलने के बाद भी वैसे ही दिखते हैं। हमारे गुरुदेव का भी यही चमत्कार है, उनको 19 साल का फोटो देखिए और आज का फोटो देखिए, थोड़ा सा बुढ़ापे का लक्षण देखेगा चेहरे पर, लेकिन शरीर दृष्टि जो है वो वैसे ही है, और वजन भी सेम है, 52 किलोज फ्रॉम द एज ऑफ 19 टू 70। साधुओं का एक लक्षण है। तो वो कहती है तपस्विनी देवी पूर्णमासी कि आप सब ब्रजवासी लोग बड़े असामान्य भाग्य से सुशोभित हो। थोड़ा कैसे, वो तो दुखी थे कि हमारे राजा को पुत्र नहीं हो रहा है, तो यह असामान्य भाग्य कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि नंद महाराज जो है वो बहुत ही जल्द एक पुत्र की प्राप्ति करने वाले हैं जो पूरे ब्रह्मांड को आनंद से भर देने वाला है। लोग कहते हैं कि अरे ऐसा है तो आइए आइए हमारे ही गांव में रहिए, हम आपको एक झोपड़ी बना देते हैं, और आज भी वो झोपड़ी वहां मौजूद है, जिसका नाम है पूर्णमासी पुरोहितानी आश्रम। बरसाना से नंदगांव जाते समय दाहिनी ओर आता है वो, 2 मील वन के आगे बहुत सुंदर जंगल में पूर्णमासी का कुटिया है जो तब बनाया गया था, आज भी वहां उपस्थित है। आपने दर्शन किया? आइए अगली बार ले जाता हूं। तो पूर्णमासी कहती है कि जब कृष्ण जन्म लेंगे तो पृथ्वी में दानी नाम की वस्तु नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतने दानी स्वभाव के रहेंगे, क्या कहते हैं उसको, उदार हृदय रहेंगे, कि उदारता ये लोग भूल जाएंगे उनको देखकर। What is praised as good qualities will cease to exist in front of Krishna's qualities. कृष्ण भगवान के दिव्य गुणों के सामने दिव्य गुण, अच्छे गुण, इसकी व्याख्या ही खत्म हो जाएगी। इतने दिव्य गुणों का सागर होगा वो बालक। और भक्ति ये एक ही समृद्धि, एक ही ऐश्वर्य माना जाएगा। It will be considered as highest wealth उनके आने से। और इसलिए मैं भी खुद यहाँ पर रहने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और उस समय ब्रजवासियों ने उनके लिए कुटी बांधी, और कहते हैं कि जिस दिन पूर्णमासी नंदगांव में आई उसी दिन मथुरा से वसुदेव ने रोहिणी को, जो गर्भवती हो चुकी थी, घोड़े पर बिठाकर धीरे धीरे करके नंद महाराज के पास भेज दिया। दिस इज वेरी यूनिक कोइंसिडेंस, जिस दिन पूर्णमासी आई उसी दिन रोहिणी भी नंद महाराज के पास आई। कंस का भय था इसलिए उन्होंने सुरक्षित रूप से अपने मित्र के यहाँ उसको भेज दिया। रोहिणी बहुत ही क्या कहते हैं पतिव्रता थी, शी वॉज वेरी ग्रेट चेस्ट लेडी। उनका दर्शन करते ही नंद महाराज यशोदा को ऐसा आनंद का अनुभव हुआ। उस समय कहते हैं कि बहुत सारे सुंदर पक्षी एक दिशा में उड़ते हुए चले गए, जिसको शुभ शकुन मानते हैं। तो रोहिणी का आना नंदगांव के लिए बहुत शुभ शकुन साबित हुआ। और रोहिणी यशोदा जैसे गंगा यमुना एक दूसरे को मिलकर भाव विभोर हो गए, अश्रुओं से नहलाए उन्होंने आलिंगन देकर, और फिर उनको आश्रय दिया उन्होंने। फिर एक सुंदर घटना हुई, एक सपना हुआ। अभी नंद बाबा की उम्र होती जा रही है, और अभी कहते हैं ना, अभी वी वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड, बट अभी क्या करेंगे, अभी 50 ईयर हो गया तो चाइल्ड का सब सकता है। वी वॉन्ट टू हैव चाइल्ड, बट हाउ इट इज़ फिजिकली पॉसिबल। तो वैसे ही उनकी उम्र 85 हो गई थी, तो उनको पता था कि अभी बालक कैसे होगा। सब कर्मकांड किए, सब व्रत किए, सब किया, और उनको पता भी था कि ये कर्मकांड करने से दिव्य बालक नहीं होने वाला है। तो एक रुपए से उन्होंने ऐसे बालक होगा ये आशा ही छोड़ दी थी। और एक दिन वो हर रोज की तरह जमुना जी के अपने सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उस थोड़ा देर हो गई उनको, जब थोड़ी देर हो गई तो कहते ना मराठी में वो झुंझू मुंझू, यानी थोड़ा सा लाल लाल ऐसे प्रकाश आने लगता है, उसको मराठी में झुंझू मुंझू कहते हैं। इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ द डे, अरुणोदय कहते हैं उसको। अरुणोदय भी हुआ नहीं है, उसके पहले की स्थिति। तो उस समय सारे साधु जो है ना, इतना सुंदर वाक्य कहा गया कि प्रभाती कर रहे थे। प्रभाती यानी हम लोग कहते हैं ना प्रातर विधि, ब्रश कर रहे थे कोई अपना सुबह का, उसको ब्रज भाषा में प्रभाती कहते हैं। तो अपने अपने कुटी के बाहर आकर प्रभाती कर रहे थे। आई वॉज वेरी थ्रिल टू हियर दिस वर्ड, प्रभाती। तो ये जा रहे हैं, सब लोग प्रभाती कर रहे हैं, उनको उन्होंने वंदन किया सबको, है ना। तो उन्होंने सबने एक साथ में पुत्रवान भव ऐसा आशीर्वाद दे दिया एक ही स्वर में। तो नंद बाबा हंस पड़े, उन्होंने कहा अभी अभी कैसे बालक होगा, कैसा आशीर्वाद दिया उन्होंने, और उनको भी पता नहीं कैसा आशीर्वाद दिया। तो वो ना एकदम चौंक गए, खुद ही कह रहे हमने कैसा आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वो कहते हैं कि अरे तो हृदय से आया आशीर्वाद, कोई इस पर योजना बनाकर आशीर्वाद नहीं दिया था। इसलिए साधु ने कहा कि आशीर्वाद जो है ना वो हृदय से देना चाहिए, वो सोच समझ के गिनती करके नहीं देना चाहिए, उसका परिणाम नहीं होता है। जो हृदय से आता है ना उसी आशीर्वाद का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं हमने ब्राह्मणों ने आशीर्वाद हृदय से दे दिया, लेकिन हमारे मन में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि इसका होगा क्या, अगर नहीं इसका फल आएगा तो इन सब लोगों का ब्राह्मणों के वचन पर विश्वास उड़ जाएगा। तो सब भागे जल्दी जल्दी प्रभाती पूर्ण करके शांडिल ऋषि के पास, अपने गुरु के पास। उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी, हमने ऐसे ऐसे नंद बाबा का सुबह सुबह आशीर्वाद दे दिया, क्या करें अभी, कैसा होगा ये। तो उन्होंने कहा कि आप गोपाल मंत्र का 18 करोड़ आहुति का यज्ञ करो, फिर आपका आशीर्वाद जो है ना वो सफल हो जाएगा, साकार हो जाएगा, सत्य में प्रतीत हो जाएगा। तो एक तरह से उनको चिंता भी थी कि हमारे आशीर्वाद का क्या होगा। तो उन्होंने तुरंत बैठ गए उन्होंने, और उन्होंने सबने मिलकर 18 करोड़ गोपाल मंत्र की आहुति यज्ञ में अर्पण की। उस समय 18 करोड़ वाली जो लास्ट वाली आहुति थी वो पूर्णाहुति और समावर्तन सब हुआ। उसके बाद में उस यज्ञ कुंड से एक नील तेज प्रकट हुआ, वो आकाश में चला गया, और वो नील तेज ने एक बालक का स्वरूप किया। फिर वो नीचे आया और वो नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया उसने। नंद बाबा इतने प्रकाशमान तेजस्वी हो गए, मानो विश्व को उन्होंने प्रकाश दे दिया उस तेज के कारण। कुछ देर बाद वो नील तेज उनके हृदय से यशोदा के हृदय में विस्थापित हो गया। यशोदा इतनी दिव्य सुंदरता को प्राप्त किया, और फिर उसके हृदय से वो बालक ने उसके गर्भ में प्रवेश किया। इस तरह से यशोदा देवी गर्भवती हो गई। होती थी कार्तिक पूर्णिमा थी गर्ग संहिता के अनुसार, और गोपाल चंपू के अनुसार वो मार्गशीर्ष प्रतिपदा शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा थी। गोपाल चंपू में कहा गया कि वो 8 महीने अपनी माता के गर्भ में रही, और गर्ग संहिता के अनुसार अगर आप गिनती करेंगे कार्तिक पूर्णिमा टू श्रावण मध्य अष्टमी बिल्कुल 9 महीने का समय है। इस तरह से यशोदा गर्भवती हुई। तो ये हुआ एक प्रवाह, कहाँ से, देवमीड़ पर्जन्य नंद उपनंद सब 5 भाई नंद महाराज, और ये गर्भवती हो गई। अभी हम चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ पर वसुदेव का जन्म हुआ और वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ, और फिर आप जानते हैं सब कहानी, शादी हो रही थी, कंस महाराज का बहुत धरा बैड रेपुटेशन था, तो उन्होंने सोचा कि अभी ये जो कुप्रसिद्धि हमारी हो गई है वो हम कभी सुप्रसिद्धि में अगर रूपांतर करना है तो कुछ सेवा करनी होगी, कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करना होगा। तो क्षत्रिय राजा कभी भी सारथी नहीं बनता, फिर भी अपने बहन के शादी के रथ में, दुल्हा दुल्हन के रथ में सारथी बनकर घोड़ा चला रहे हैं, सब उनका गुणगान कर रहे हैं, वाह वाह कंस महाराज तो सुधर गए एकदम आज। बहुत सॉरी, अचानक आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिसका तू रथ हाँक रहा है उसके 8वें पुत्र से तेरा वध होगा। सारा जो कहता है ना फसाड, जो जो सॉन्ग जमा के रखा था ना सब उधार करके उतर गया। अचानक तलवार निकाली, जिस तलवार को निकाल कर देवता भी कांपते थे, वो तलवार निकाली चक 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 चक, और दूसरे हाथ से बाल पकड़े वैसे काटने वाला था, ना रहेगी देवकी ना होगा आठवां पुत्र। उतने में तुरंत हवा की गति से उन्होंने उनका बाल हाथ रोका वसुदेव जी ने, और बहुत कुछ समझाया, उनको समझ में नहीं आया। बाद में कहा कि प्रैक्टिकल चीज, पहले सिद्धांत समझाया, अरे जीवन तो नश्वर है, सबको मृत्यु होने वाली है, ये कन्या को तुम्हारी बहन है, सब वो सब समझ में नहीं आया उसको, क्योंकि जब आदमी स्वार्थ से भर जाता है ना तो उसको कोई सिद्धांत की बात समझ में नहीं आती। वो तो पकड़े रहा है, कांप रहा है थर थर, वो हाथ पकड़ा है, वो तलवार है, सब पकड़ा है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं मेरे हर एक पुत्र को आपको सौंप दूंगा, जो चाहे कर लेना, इससे आपको क्या कष्ट है, इससे वध नहीं होने वाला आपका, इसके पुत्र से होने वाला है, तो उसके होने वाले हर एक पुत्र को मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा, अभी क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे तलवार नीचे आई, बाल छोड़ दिए, उतर के चला गया, क्योंकि उसको वसुदेव के सत्य वचनी होने पर परम विश्वास था। देखिए एक कुप्रसिद्ध, हाँ क्या कहते हैं उसको, दुष्ट व्यक्ति को भी सत्य वचनी व्यक्ति पर कितना विश्वास है। हाँ वसुदेव कितने महान होंगे, देखो वैसे ही कोई जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो सहजता से किस पर विश्वास या कोई प्रेम में नहीं करता किसी पे, लेकिन ऐसा होने पर भी वसुदेव अपने दामाद जो अपने बहनोई है उन पर इतना विश्वास था कि ये व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, और अपने वचन के अनुसार पहले बालक को लेके भी आए, वो नामकरण करके लेके आए, बोले कीर्तिमान को आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कंस को लगा अरे मुझे पता था ये सत्य सत्य वचनी है, लेकिन इतना सत्य वचनी होगा इसका अनुभव नहीं था। बोले जाओ वसुदेव जाओ, मैं तुम्हें अभय देता हूँ, जा अपने बालक को लेके जाओ। उसके बाद हमारे नारद मुनि आए, है ना, लग सोच नारद मुनि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नारद मुनि को भी बहुत जल्दी थी कि भगवान का अवतार ऐसा नहीं होगा, अगर इसने बालक को नहीं मारा तो कैसे होगा, और नारद मुनि को उन सारे बालकों का इतिहास भी पता था। तो नारद मुनि जाके कंस को बहकाया, अरे देखो ये कमल देखो, ये पंखुड़ी को पकड़ो और गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी आठवीं है, ये आठवीं है, अब इसको पहला पकड़ो फिर गिनो फिर ये आठवीं हो जाएगी, इसको पहला पकड़ो तो ये आठवीं हो जाएगी, अरे मूर्ख ये वाम गति है देवताओं की, इससे चक्र में मत पड़ना, कौन सा पहला कौन सा आठवां ये उनको ही पता है, क्यों चांस लेते हो। अच्छा थैंक यू वेरी मच, मुझे आज पता चला कि जीवन में गुरु की जरूरत क्यों होती। तुरंत बुलाया, ले आओ उसको, इन दोनों को अरेस्ट करो, और जेल में बंद करके कीर्तिमान को उठाकर पटक कर शिला पर मार दिया माता के आंखों के सामने, और हर एक बालक को मारता रहा। कॉमन लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे जब आठवें बालक का बालक के द्वारा ये सब होने वाला है तो वो बच्चा पैदा ही नहीं करते। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे आठवें बालक का सब संकट है हमारा, ठीक है नो प्रोजेनी, फिर देवकी ने ऐसा क्यों किया, वसुदेव ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको पता था कि उनके आठवें गर्भ के रूप में भगवान आने वाले हैं जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं, और वो उनको अगर आना है तो 7 बच्चों को पहले आना पड़ेगा फिर वो आठवां आएगा, इसलिए उन्होंने ये सारा कष्ट सहन किया अपने आंखों के सामने, अपने उनके जेल के दीवार पर वो धब्बे थे खून के एक एक बालक के, हाँ रोज दिखते थे उनको, ऐसा कष्ट सहन किया देवकी, और केवल तुम्हें और हमें भगवान का अवतार की प्राप्ति हो जाए इसलिए देवकी ने सब कष्ट सहन किया। वो देवकी माता का जो तपस्या और जो त्याग है ना उसको हम समझ नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कैसे हो सकता है एक माता अपने आंखों के सामने ये सब सहन कर सकती है एक दिव्य उद्देश्य के लिए। तो फिर नारद मुनि ने ऐसा क्यों उनको प्रवृत्त किया, क्यों बहकाया उनको करो करो, क्योंकि नारद मुनि को उन बच्चों का इतिहास पता था, वह लंबा इतिहास ऐसा था कि उनको शाप मिलकर ये शाप मिला था कि उनको देवकी के गर्भ में केवल रहना है, गर्भवास जो बहुत कष्टमय होता है, गर्भवास गर्भ में रहना बहुत कष्ट होता है, तो वो कष्ट प्राप्त होने का शाप था और उसके बाद तुरंत मृत्यु का वरदान था उनको। हमको लगता है कि ये तो भयंकर मृत्यु हो रही है, लेकिन वो तो उनके लिए वरदान था, हिरण्यकश्यप ने शाप दिया था कि उनको अपने पिता के हाथ से ही मृत्यु होगी, तो वो सब ही जो थे वो पुराने जमाने में हिरण्यकश्यप के पोता थे, सब वो प्रपोत्र यानी ग्रैंडसन्स थे, उन्होंने अपराध किया था उनका, तो इन्हें शाप दिया गया उनको, तो ये इतिहास पता था। और उनको नारद मुनि को ये भी पता था कि आगे जाकर कृष्ण इन 6 जो बालकों की हत्या की गई है उन बालकों को सूतल लोक से जाकर लेके आएंगे, ये सब देवकी का स्तनपान करेंगे, महाप्रसादी दूध पियेंगे और सब गौलोक धाम जाएंगे, इसलिए उनको कष्ट नहीं था कि इनका वध होगा तो भी उनका कल्याण होने वाला है। तो संतों को ना सब त्रिकाल दर्शन ज्ञान होता है, हमको जो दिखता नहीं उनको दिखता है, हम जो देख नहीं पाते वो संत लोग देखते हैं उनकी दिव्य दृष्टि से, इसलिए नारद मुनि ने ये लगता है बड़े क्रूर कृत्य करने के लिए कंस को प्रवृत्त किया, फिर भी उन्होंने कल्याणकारी कार्य ही किया। तो ऐसे करते करते 6 बालकों का वध किया गया। फिर सातवें बालक के रूप में, अभी इसके पीछे एक सुंदर कहानी है जो मैं बताता हूँ, सातवें बालक के उपलक्ष्य में आपको वो कहानी बताता हूँ। लेट्स गो इन फ्लैशबैक, ठीक है। जब कंस ने पृथ्वी पर जन्म लिया था तो बहुत बड़ा आतंक मचाया उसने, हाहाकार मचाया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रावण भी कंस के सामने कुछ भी नहीं था। उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि रावण ने वो शिव धनुष उठाने का प्रयास किया था, वो जो उठा नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया था। और कंस ने एक बार परशुराम जी का महेंद्र पर्वत 100 बार उठाया, तो परशुराम जी अरे प्रभावित हो गए, अरे ऐसा किसकी बात शक्ति है जो 100 बार मेरा पर्वत मेरे साथ उठा सके। तो वो ध्यान से उठ के देखा कि कंस ऐसे हरकत कर रहा है, बोले तेरे इतना शक्ति का गर्व है तुझे, ये ले, ये विष्णु का धनुष है, इसको उठा उठाकर प्रत्यंच चढ़ाकर दिखा दे, फिर मैं तुझे मानता हूं कि तू बलशाली है। अरे कंस ने उसको कैच किया, विष्णु के धनुष को, और 100 बार प्रत्यंच चढ़ाया उसके ऊपर और टनत्कार किया। तो गुस्सा होने के बदले परशुराम एकदम प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ले तुझे भेंट देता हूं इस विष्णु धनुष को। तो ही गिफ्टेड हिम। तो जिस धनुष को शिवजी का धनुष जो विष्णु के धनुष से कई गुना कम प्रभावी है, कम भारी है, कम शक्तिशाली है, उसको रावण तो हिला भी नहीं पाया था, लेकिन कंस ने विष्णु के धनुष को उठाकर 100 बार प्रत्यंच चढ़ाई थी, ये उसके बल का प्रमाण है। तो इस ऐसे बल वाले कंस को फिर परशुराम ने बोला कि ये लो विष्णु का धनुष, लेकिन जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। सो द ऑलवेज दिस वर्ल्ड इज मिक्स्ड विद हैप्पीनेस एंड सॉरो, खट्टा मीठा चलते रहता है। विष्णु धनुष प्राप्त हो गया लेकिन साथ में एक गुड न्यूज भी मिला कि तुम्हारा इसको आगे कोई तोड़ेगा तो तुम्हारा वध करेगा वो। उसके कहला देखा जाएगा जब आएगा तभी। अभी आकाशवाणी हुई तो उसको टोंग घंटी बजी कि भाई हो सकता है वही हुआ। तो उस समय कंस के आतंक से कंस ने बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे। तो जब गलत आदमी को बहुत सारे वरदान प्राप्त होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो उसने आतंक शुरू किया, सभी राक्षसों को वश में किया, देवताओं को अमरावती में जाकर परास्त करके इंद्र को भगा दिया, देवताओं को पदच्युत कर दिया। तो पृथ्वी माता परेशान हो गई, क्योंकि पृथ्वी माता का नाम ही धरा है, हाँ, धारण करने वाली। वो कितना भी वजन धारण कर सकती है लेकिन वो असत्य और पाप का वजन धारण नहीं कर सकती। तो असत्य और पाप का बल बढ़ने से, बोझा बढ़ने से वो फिर गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास गई। रोते रोते ब्रह्मा जी सभी देवताओं को भी परेशान थे बेचारे। सो देवताओं को लेकर गाय रूपी पृथ्वी को लेकर सब क्षीर सागर के किनारे आए, जहां पर अंदर क्षीरोदक शाही विष्णु विराजमान है। उनको उन्होंने पुरुष सूक्त का गायन किया, रो रो कर हृदय से पुकारा। तब क्षीरोदक शाही विष्णु प्रकट हो गए और गर्ग संहिता के अनुसार वो क्षीरोदक शाही विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने ये सभी पूरे एंटराज को पार्षदों को लेकर वो गौलोक चले गए। और गौलोक में जाते ही श्री हरि ने दर्शन दिया, गौलोक स्वामी जो हरि है भगवान, उन दर्शन दिया और ये क्षीरोदक शाही विष्णु हरि के अंदर विलीन हो गए। अचानक वहां से राम लक्ष्मण हनुमान, राम लक्ष्मण चारों भाई प्रकट हो गए, वो इनके अंदर विलीन हो गए। अचानक नरसिंह भगवान आए, वो विलीन हो गए। ऐसे करते करते सारे अवतार भगवान के प्रकट हुए उनके आंखों के सामने और सब वो विष्णु, सारे विष्णु के अवतार जो है वो हरि के अंदर विलीन हो गए। तो सब देख रहे हैं देवता लोग क्या हो रहा है। तो फिर भगवान ने कहा डोंट वरी, मैं भी अवतार लूंगा। और है ना, उन्होंने एक एक व्यक्ति को सबको रोल दे दिया अपना अपना। उन्होंने कहा वसु आप शूरसेन बन जाओ, ध्रुव वसु आप देवक बन जाओ, वसु आप उद्धव बन जाओ, दक्ष आप अक्रूर बन जाओ, मरुद देवता आप उग्रसेन बन जाओ, प्रहलाद जी आप सात्यकी बन जाओ, और सर्वश्रेष्ठ वसु जो है क्या ज्येष्ठ वसु उनको कहा भीष्म बन जाओ, अग्नि को आदेश दिया आप द्रोणाचार्य बन जाओ, शिवजी को आदेश दिया आप अश्वत्थामा बन जाओ। सबको उन्होंने रोल दे दिया। उस समय राधा रानी बेहोश हो गई। तो उनको लगा अरे क्या हुआ, उनको जगाया, होश में लाया और क्या हुआ। बोले आप तो जा रहे हो, आपके आने वाले विरह से मैं, आने वाले विरह के विचार से मैं व्याकुल हो गई, इसलिए बेहोश हो गई। बोले ऐसे कैसे, मैं तो आपके बिना जा नहीं सकता, मैं आपको साथ जाऊंगा, इसलिए आपका, वो कहते मैं नहीं आऊंगी, आप अगर मुझे लेके जाएंगे तभी, मैं तब आऊंगी जब वृंदावन धाम गोवर्धन और यमुना होगी तो ही मैं आऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं कि आपका ये मंतव्य जानते हुए पहले से मैं गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा और पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना को पृथ्वी पर भेज चुका हूँ, ऑलरेडी पृथ्वी पर विराजमान है, तो आपको निश्चिंत होना है, कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। फिर वो कहते हाँ मैं आऊंगी, लेकिन मैं ना आपके बिना किसी को देखूंगी, ना आपके बिना मैं किसी ध्वनि करूंगी या किसी को श्रवण करूंगी, ना सुनूंगी ना बोलूंगी ना देखूंगी। जब आपका दर्शन होगा, आपका सान्निध्य मिलेगा, तब मैं बोलूंगी देखूंगी सुनूंगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद में भगवान की इच्छा के अनुसार पूरा गोवर्धन जो है वो पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। पूरी यमुना जी गोलोक धाम से 1,00,000 पहियों वाले स्वर्णमय रथ से, अनंत घंटियों से सुशोभित रथ से बैठे हुए अपने अनंत सखियों के साथ वो गोलोक धाम पार करते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए, ब्रह्मा लोक को पार करते हुए फिर पृथ्वी पर अवतरित हुई है। इस तरह से सेटिंग द सीन कहते ना, इस तरह से सीन सेटिंग हो गया है। और फिर जब ये हुआ तब भगवान ने सबको आदेश दे दिया, सब लोग चले गए अपना रोल लेने के लिए। कोई यदुवंश में जाओ, कोई वृष्णिवंश में जाओ, कोई नंदगांव में जाओ, बरसाने में जाओ, सबको अपना अपना रोल दे दिया। और फिर भगवान ने योग माया को बुलाया। यहाँ पर हमारा कहानी वापस जुड़ जाती है। क्या कहाँ रुकी थी कहानी हमारी? 7वें प्रेगनेंसी के लिए, है ना। तो उस समय उन्होंने कहा कि 7वें गर्भ के रूप में मेरे प्रथम अवतार अनंत शेष बलराम जी अवतार लेंगे, तब उस अवतार उस देवकी के गर्भ को आप निकालकर रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर देना, और ये सेवा जब आप करोगी तो उसके फल के रूप में आप मेरे बहन बन जाओगी, मेरे साथ आप गर्भ में रहेगी मेरी माता की। ये उनको वरदान दिया था। तो अभी 7वां गर्भ जब देवकी के गर्भ में, गर्भाशय में स्थापित हो गया, तो योग माया ने आकर अपनी दिव्य शक्ति से उसको संकर्षित किया और रोहिणी देवी जो गर्भवती पहले से थी उसके गर्भ में उसको विलीन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो देवकी के गर्भ में थे वो अनंत शेष थे, ऐश्वर्य संपन्न बलराम जी थे, और जो रोहिणी के गर्भ में थे पहले से वो मूल बलराम जी थे, जो लीला अवतार है भगवान के। तो रोहिणी के गर्भ में जो थे मूल बलराम जी, उसमें ये अनंत शेष विलीन हो गए, और जनता के लिए क्या हुआ? गर्भपात, मिस कैरेज हो गया। तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया, ठीक है होने दो, क्या फर्क पड़ता। उसके बाद में फिर श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब ये समझने वाली बात यह है कि जो देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रवेश कर गए वो भी वैकुंठ कृष्ण थे, यानी ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण थे, और जो गर्भवती यशोदा हुई वो माधुर्य कृष्ण थे। इसमें फर्क क्या है कि देवकी वसुदेव को पता था कि मेरे घर में भगवान आने वाले हैं, और जब भगवान का दर्शन किया तो भी पता था कि ये भगवान है, लेकिन यशोदा को पता नहीं था कि ये भगवान है। क्योंकि ब्रज की एक बड़ी क्वालिफिकेशन है, ब्रज में जन्म लेना है किसी को या भगवान चाहते हैं कि इसको जन्म दे, तो वो तो बड़े साक्षात्कारी जीव होते हैं, सब ज्ञान पूर्ण होता है उनका साक्षात्कार होने के पश्चात उनको जन्म मिलता है। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्तियों को ब्रज में जन्म लेने के पहले उनका ज्ञान का हरण कर लेते हैं। कौन सा ज्ञान? कि मैं भगवान हूँ, उस ज्ञान से हरण कर लेते हैं। मतलब मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं बच्चा हूँ, बालक हूँ, खेलने वाला हूँ, चोर हूँ, जो भी कुछ हूँ। तो ये ज्ञान किसी को नहीं था, और इसलिए वो कृष्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अपना भगवान का जो सत्ता है उसको भी त्याग दिया ब्रजवासियों के लिए। और ये जो कृष्ण है वो अपनी जानकारी रखते हुए उन्होंने अवतार लिया था। तो फिर वो कृष्ण जो है, वो जो ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण है, वो गर्भ में प्रवेश किए। सभी देवताओं ने आके स्तुति की उनकी, पूरा कारागृह जो है वो प्रज्वलित हो गया, प्रकाशित हो गया, उसके तेज से कंस भी भयभीत हो गया। अरे 60वीं बार तो इतना तेज हो रहा है कि पता नहीं मेरा काल ही जन्म लेने वाला है, तो उसका भय बढ़ गया। और आनंद हो गया सब जगह पर, देवकी आनंदित हो गई, तेजस्वी हो गई, सब देवता अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में आकर प्रदक्षिणा कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। और फिर क्या हुआ, फिर सुनिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर श्रावण मास का कृष्ण पक्ष आया, हर्षण योग वृष लग्न अष्टमी तिथि आधी रात का समय, रोहिणी नक्षत्र और चंद्रोदय का काल, ऐसा सुंदर इसका वर्णन किया गया गर्ग संहिता में। इतनी सुंदर घड़ी आ गई, कहते हैं सारे तारों ने अपने आप को सबसे बेस्ट जगह पर रखा। मैट मीन्स द कंस्टेलेशंस वर द बेस्ट, बिकॉज तारों को भी अपनी सेवा करनी थी कि भगवान आ रहे हैं तो हमको सबसे उच्च राशि में और कलेक्शन में रहना चाहिए। पृथ्वी ने एक अपने एक नववधु, यानी लाइक अ ब्राइड, शी डेकोरेटेड हरसेल्फ, क्योंकि पृथ्वी को पता था कि अभी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जगह है जहाँ पर भगवान किधर भी नंगे पैर नहीं घूमते, लेकिन उनको पता था कि जब ब्रज में आएंगे तो नंगे पैर घूमेंगे। इसका मतलब पृथ्वी क्या सोच रही है कि मेरे वक्ष स्थल पर ऐसा सुंदर गहना प्रकट होगा भगवान के चरण कमलों का, जो मेरे लिए बहुत गौरवशाली होगा। इस विचार से ही उसने नववधू की तरह अपना श्रृंगार किया। द फीट ऑफ द लॉर्ड विच आर सॉट आफ्टर एंड मेडिटेटेड अपॉन बाय ग्रेट सेजेस, दोज फीट विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अटेन बाय एनीबडी विल बी कॉन्स्टेंटली मूविंग अपॉन माई चेस्ट। उनका भाव था, अभी किसी भी समय पृथ्वी पर एक सीजन होता है ना, एक ऋतु होता है। आपने कभी देखा है क्या, दो दो ऋतु एक साथ में नहीं होता है, लेकिन छो ऋतु सब भगवान के भक्त हैं, वो ऋतु के रूप में सेवा करते हैं। वो छो ऋतु जो है वो एक साथ में अपना पूरा सौंदर्य उन्होंने प्रकट किया। द बेस्ट ऑफ ऑल ऋतु सीजन्स वर प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम एट दैट टाइम। और सभी नदियां जलाशय समुद्र जितने भी जलाशय सब स्वच्छ हो गए। क्यों, अभी आएंगे तो हम हमारे अंदर स्नान करेंगे कि नहीं, हमको पुनीत करेंगे। फिर सहस्त्र दल शतदल कमल प्रकट हो गए यमुना जी में, कुंडों में, सब जगह पर। अभी रात में कमल खिलते हैं क्या, कभी आपने देखा है? रात में तो कमल बुझ जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। लेकिन वो कमल क्यों खिल गए, इसके चार कारण बताए गए हैं। हाँ, वो कमल जो है ना, वो लक्ष्मी देवी का एक सुंदर एक क्या कहते हैं, आभूषण है, तो कमल ही नहीं कहते उसको। तो हमारी जो मालकिन है, स्वामिनी जो है, वो वहां से गुजर रही है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म होने का जब समय आया तब उन्हें लक्ष्मी को आह्वान किया, बोले जाओ अभी तुरंत जाओ नंदगांव, जाओ गोकुल, जाओ सॉरी नंदगांव नहीं गोकुल जाओ, और गोकुल को धन धान्य से ऐश्वर्य से भर दो, मैं आ रहा हूँ, मेरे उत्सव की तैयारी करो। तो लक्ष्मी देवी जो है वो यमुना जी के बीच में से कमल उठाकर ले जा रही है, तो अपनी स्वामिनी को प्रसन्न करने के लिए सब कमल खिल गए। चंद्रमा अष्टमी के समय था तो आधा था, लेकिन चंद्रमा सोच रहा है कि अरे मेरे वंश में कृष्ण जन्म ले रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने चंद्र वंश में जन्म लिया है, राजा रानी सूर्य वंश में आई है, प्रभु रामचंद्र सूर्य वंश में आए हैं। तो चंद्र सोच रहा है कि मेरे वंश को गौरवित करने के लिए कृष्ण आ रहे हैं, परम भगवान, और मैं आधा क्यों रहूं, मुझे पूरा होना चाहिए। वो एक ही समय चंद्र ने प्रकृति का नियम तोड़ा और पूरा इतने प्रकाशित हो गए कि कमलों को लगा के थोड़ा दिन हो गया, सो वो खिल गए। और एक कारण यह है कि कमल क्यों खिले, क्योंकि जो हमारे विष्णु भगवान है उनका एक हाथ में कमल अलंकार है, तो ये हमको धारण करने वाला है। उस आनंद से सब लोग, सब अपना एक भाई इनके हाथ में बैठने वाला है, उस भाई सब लोग खिल गए उस समय, ये कारण है उसके। तो उसके बाद में मंद मंद हवा जो है वो यमुना जी के ऊपर से सुगंधित पू केसर और शीतलता लेकर आ रहे हैं, बह रहे हैं, सब प्रकृति में आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है सभी वृक्षों पर, जब रात को फूल कभी होते नहीं है, लेकिन फूल फल सब उससे भर गए सारे वृक्ष वेलियां। उस समय सारे पक्षी जो सोया करते थे रात को वो सब जग गए। हाँ, कौन कौन जग गए, देखो हनी बीज यानी मधुमक्खियां, कोयल, चक्रवाक, मोर। और मोर रात को नाचने लगे और आकाश में बादल आए, उन्होंने मंद मंद गड़गड़ाहट शुरू की, मंद मंद वर्षा का आरंभ किया। उसको देखकर मोर को नृत्य करने का आनंद हुआ, वो रात के बीच में नृत्य कर रहे हैं। और एक विशेष बात थी कि साधु लोग जो कंस के भय से शांत थे, उनको आदेश था कोई भगवान का नाम जब होना नहीं चाहिए, कोई हवन नहीं होना चाहिए, सब लोग ने हवन वहन सब यज्ञशाला बंद थी सबकी, अचानक वो निर्भय हो गए रात में, बीच रात में, पता नहीं क्यों निर्भय हो गए, एकदम श्लोकों का जोरदार उच्चारण करने लगे और यज्ञ कुंड जलाया और यज्ञ हवन शुरू कर दिया उन्होंने। क्या मतलब है, जब भगवान के अवतार होने का समय होता है सब भय नष्ट हो जाता है। स्वर्ग में विद्याधर स्त्रियां नृत्य करने लगी अप्सराओं के साथ। हाँ, किन्नर गंधर्व गीत गाने लगे हरि बोल, और सिद्ध चारण जो है वो सुंदर सुंदर पवित्र प्रार्थनाएं उच्चारण करने लगे। और देवता लोग हैं ना, देव ऋषि नारद जैसे, वहां पर ना देव ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, देवियां होते हैं, अप्सरा गंधर्व किन्नर यक्ष किम पुरुष सब प्रकार के देवता होते हैं। वो हवाई जहाज में भर भर कर पुष्प लेकर पूरे मथुरा और गोकुल पर वर्षाव कर रहे हैं पुष्प वृष्टि का। वो भी भयभीत है बहुत दिन से कंस के भय से, उनको भी पदच्युत कर दिया उसने, तो हमारी उद्धार करने के लिए वादे को निभाने के लिए भगवान आ रहे हैं, इसलिए वो सब लोग बार बार जाकर खाली कर रहे हैं हवाई जहाज, वापस आ रहे हैं। उसका एक वहां का एक विशेषता है, इतने फूल वहां क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर केवल फूल खिलते हैं, मुरझाते नहीं है, सो ओनली प्रोडक्शन नो डिस्ट्रक्शन, तो करें क्या, इसलिए बार बार मौका ढूंढते हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि करते रहते हैं। कोई वध हो गया किसी का, जन्म हो गया, नामकरण हो गया भगवान का, किसी का जनी हो गया तो पुष्प वर्षाव, राक्षस का वृद्ध हो गया पुष्प वर्षाव करते हैं। इस तरह से आकाश में पारिजात मालती मंदार जैसे सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा हो रही थी। देवता लोग मृदंग दुदुम्बी भेरी बजा बजा कर जय जयकार कर रहे थे। 10 दिशाएं आनंद से भर गई, निर्मल हो गई, आकाश स्वच्छ हो गया, तारे चमकने लगे आनंद से। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। क्यों दिव्य कहते हैं उनका अवतार को? क्योंकि वो ऐसे रोते बालक की तरह नहीं आए, षड ऐश्वर्य के साथ, हाँ, शंख चक्र पद्म गदा वैद्योर मुनि का मुकुट पहनते हुए वो प्रकट हो गए। उनके घुंघराले बाल ऐसे उनके कंधे पर ऐसे बह रहे थे, कैस्केडिंग ऑन हिज शोल्डर्स, ब्यूटीफुल कर्ली हेयर, और उनके छाती पर त्रिवत्स का मणि था, कौस्तुभ मणि था, और सारे रत्नों की माला थी। उन्होंने पीताम्बर धारण किया था जो जो तप्त कांचन की तरह प्रकाशित था। उनकी कमर में कमर काचनी थी, किनकिनी जाल था, जो किन 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 कहता है उसको किनकिनी जाल कहते हैं, और बाजू बंद कलाई बंद जो उन्होंने फूलों की माला पहनी थी उसके अंदर अनंत मधुप जो थे, यानी मधुमक्खियां जो है वो गुंजारव कर रहे थे। वो अनंत जन्मों के बाद में तपस्या भक्ति सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो गुंज वो क्या कहते हैं उसको, मधुप बन जाते हैं, यानी कि भंवरे बन जाते हैं, जो कृष्ण को आनंद देने के लिए उनके माला के आसपास गुंजारव करते हैं, लेकिन कृष्ण का गुणगान करते रहते हो। तो ऐसे उनके माणी मालों मालाओं के फूलों के साथ वो भंवरे गुंजा रहे हैं, और ऐसे दिव्य रूप में भगवान ने जन्म लिया। तो कहते हैं कि वसुदेव जो है ना, वसुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे कंस को बिना भय के कंस के ये प्रकट हो गए हैं, तो बिल्कुल ये भगवान होंगे मेरे बालक। और सोचा कि ये सब जगह व्याप्त है भगवान, लेकिन इनकी असंत इतनी अनंत कृपा है कि वो मेरे बालक के रूप में जन्म ले रहे हैं। ही इज ऑल परवेडिंग बट ही हैज चोजन टू टेक बर्थ एज माई चाइल्ड। फिर ये साधारण बालक नहीं है, क्योंकि पूर्ण क्या कहते हैं फुल्ली ग्रोन साइज में ये प्रकट हो गए हैं। तो ये अंडरस्टैंड द डिविनिटी ऑफ द बर्थ ऑफ कृष्णा। और जो मेरे आराध्य देवत हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड और परम पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान जो है वो आज मेरे सामने मेरे बालक के रूप में प्रकट हैं। ये सोचते ही कंस जो है वो वसुदेव जी निर्भय हो गए। उन्होंने भगवान की बार बार स्तुति की, और फिर भगवान ने उनसे संवाद किया है, बहुत सुंदर संवाद किया है। उन्होंने कहा कि जब तुम पृश्नि और सुतपा थे तब मैं पृश्नि गर्भ के रूप में आपके जन्म पुत्र बना था, जब आप अदिति और कश्यप थे तब मैं वामन के रूप में आपके गर्भ में जन्म लिया था, वही हूं मैं। आज आप इस जन्म में देवकी वसुदेव के रूप में आए हो और मैं आपके सामने तीसरी बार खड़ा हूं। ये सब क्यों बता रहे हैं? उनका भय मुक्त करने के लिए बता रहे हैं। डोंट वरी आई एम देयर, क्योंकि मन में फिर भी भय था उनके कंस के द्वारा मारा जाएगा। तो क्योंकि वात्सल्य कैसा होता है ना, आपका पुत्र कितना भी बड़ा बलवान होगा वो आपके लिए छोटा सा बालक ही होता है, आप उसका हमेशा सुरक्षा के बारे में सोचते रहते हो, कुछ उसको ईजा न पहुंचे, कुछ उसको तकलीफ न पहुंचे, क्योंकि माता के हृदय में बालक कितना भी बड़ा हो गया तो भी वो बालक ही रहता है। मैंने मेरी दादी को देखा है, वो मेरे 60 साल के पिताजी को कैसे पुकार के डांटते थे, उनके लिए छोटे से बालक की तरह ही थे। सो माता का वात्सल्य जो है ना, उसकी आंखों में कभी बालक बड़ा होता ही नहीं है, वात्सल्य का एक प्रूफ है वो। तो फिर भगवान ने संवाद करने के बाद उनको प्रयास किया, तो उस समय देवकी का वात्सल्य कहते हैं कि वसुदेव के वात्सल्य से भी श्रेष्ठ है। इसलिए इतना सब कहने के बाद भी देवकी ने कहा, नहीं 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 मेरी आपको विनती है कि आप छोटे हो जाओ मेरे, मैं आपको कहीं गोद में आंचल में छुपा लूं। तो उसके पहले उन्होंने कहा कि मैं बालक रूप में आऊंगा, उसके पहले मैं वसुदेव को बताते हैं कि आप मुझे जैसे बालक रूप में आऊंगा तुरंत टोकरी में लेकर जमुना पार करके गोकुल में छोड़ के आना, वहां पर एक कन्या का जन्म उसको लेके आना। तो जैसे ही वो ये कहते हैं तो उनका वो रूप अदृश्य हो जाता है और एक बालक के रूप में प्रकट हो जाके उनको गोद में जाते हैं। तुरंत देवकी उनको स्तनपान करती है और तुरंत पिताजी उनको टोकरी में लेकर, जब से ही खड़े हो जाते ना, जो सब श्रृंखलाओं से बांध के रखा है ना, सारी श्रृंखलाएं गिर जाती तुरंत। तो ऐसे ऐसे कहा गया है कि जैसे ही हम कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं हमारे सारे बंधन की श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। तो ऐसे बंधन है सब, ये जन्म मृत्यु जला व्याधि सत्वगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुण के जो बंधन है सब, ये कर्मों के फलों के बंधन जो है सब टूट जाते हैं जब हम कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उनको आलिंगन देते हैं, अपना बना लेते हैं। तो जैसे आगे चले गए तो सारे दरवाजे के ताले टूट गए, सारे पहरेदार सो गए, जो इतने कितने आंखों में तेल डालकर प्रहार दे रहे हैं, एक एक क्षण का रिपोर्ट दे रहे हैं, वो सब सो गए, क्योंकि योग माया वहां पर पूरी एक्टिव है ना, योग माया सबको सुला दिया, पुरो सब दरवाजे खुल गए। हाँ, भगवान की भक्त, भक्त को जब आगे बढ़ना होता है, जिसने भगवान को अपना बनाकर उसको स्वीकार करके जीवन को चलाने का प्रयास किया है या निर्णय लिया है, सारे ताले टूट जाते हैं, उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। यही ये ताले टूटने का जो कार्य है, जो घटना है, ये हमको बताती है कि जैसे हम भगवान को अपना बना देते हैं और जीवन में चलना आरंभ करते हैं, सारे बंधन के ताले टूट जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, आठ दस दरवाजे तोड़ के बाहर निकलते हैं, तो यमुना जी के पास जाते हैं। यमुना जी तो उछल रही है पूरी बीच रात में, क्यों उछल रही है? अरे वो तो कब से गोलोक से आकर यहाँ वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि मेरे भगवान कब आएंगे। अभी वो घड़ी आ गई तो उछाल रही है आनंद से, उससे सोच रही क्या करें, अभी मैं जाऊँ कैसे अभी गोकुल इसको पार करके। लेकिन फिर वो उनको दृढ़ निश्चय हो जा रहे तो घनघोर वर्षा होने लगती है। उस समय जैसे ही घनघोर वर्षा आरंभ होती है, अनंत शेष तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो आचार्य कहते हैं कि जब हम कृष्ण को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो बलदेव जी अपनी रक्षा करने के लिए आपके पीछे पीछे चलते हैं। वी गेट द प्रोटेक्शन ऑफ बलदेव जी एज सून एज वी एक्सेप्ट कृष्णा एज योर मास्टर। तो सभी, अभी वर्षा क्यों हुई? क्योंकि वो वसुदेव और कृष्ण को अभिषेक करना चाहते थे कि हमारे अंदर अगर पानी है तो उसका प्रयोजन क्या है? जहां भगवान है और भगवान के भक्त हैं, वहां पर हमारा वर्षा होना चाहिए। इस अभिषेक के भाव से उन्होंने वहां पर वर्षा शुरू की। लेकिन यमुना जी बढ़ती बढ़ती गई। यमुना क्यों बढ़ रही है? वो वसुदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, अभी एड़ी तक पानी है, घुटनों तक पानी है, जंगा तक पानी है, कमर तक पानी आया, और यमुना जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए आतुर है। ऊपर ऊपर जा रही है तो भगवान ऐसे तुरंत चरण बाहर निकाल लेते हैं। एक जगह वर्णन ऐसे आता है कि वो चरण बाहर निकाल लेते हैं और वसुदेव का मुख नाक पार करके यमुना जी चरणों को छूती है और रास्ता देती है तुरंत। एक जगह ऐसे वर्णन आता है कि भगवान कूद पड़े यमुना जी के जल में और वसुदेव जी बोल रहे कोई लो, अरे मेरे बालक को कोई लो। अभी भी उस घाट का नाम है कोई लो घाट, जहां पर वो वसुदेव ने पुकारा था। मुझे बताने में बहुत समय लगा आपको, लेकिन ये ऐसे आंख मिचने के बीच में हो गया। उन्होंने जंप लगाई, जमुना जी को अंग स्पर्श दिया, जमुना जी को क्या कहते हैं उसको अंग संग दिया, जमुना जी को चरणामृत बना दिया तुरंत एक क्षण के अंदर, और ये पुकार रहे हैं उतने में जमुना जी रास्ता दिया और उन्होंने भगवान को कैच कर लिया, वापस टोकरी में लग दिया। हमको बताने में समय लग रहा है, उतने झट से सब कुछ हुआ और सारी जमीन खुली हो गई, जमुना जी अलग हो गई, तुरंत पार करके चले गए, शेषनाग उनके पीछे पीछे चले गए। तो यहां पर जब जन्म हुआ भगवान का, जब प्रकट हुए भगवान, तो ये सारा जो वर्णन मैंने किया ना, वो उसमें रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय चरण चल रहा था। देयर आर फोर टाइम डिविजन्स ऑफ वन नक्षत्र, उसका जो द्वितीय चरण है, तभी यहां पर वसुदेव देवकी को कृष्ण की प्राप्ति हुई। और ये सब समय था ना, बाहर निकले, श्रृंखला टूटी, यमुना जी में गिरे, फिर पार की यमुना जी, फिर चल के नंद भवन गोकुल में पहुंचे, तब तक तृतीय चरण आरंभ हो चुका था। और तृतीय चरण में यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया। मैं एक बात बताना भूल गया आपको, जब जैसे ही यशोदा माई गर्भवती हुई, तो श्री कृष्ण और योग माया दोनों गर्भ में प्रवेश किए और दोनों गर्भ में साथ रहे 9 महीने। और यशोदा जब वो प्रसूत हो गई, तो वो भगवान की इच्छा से, योगमाया के प्रभाव से, वो ऐसे ही उसको ग्लानी आ गई कि वो प्रसूति होकर सो गई। उसको पता नहीं बालक हुआ है, एक हुआ है, दो हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की, कुछ पता नहीं, भगवान की इच्छा थी ऐसी। तो जब वो पहुंची तो योगमाया के प्रभाव से सब लोग सो रहे हैं गोकुल में। तृतीय चरण में भगवान ने जन्म लिया। उस समय कहते नंद बाबा की बहन को स्वप्न आया, नंद बाबा की बहन को स्वप्न आया कि मेरे भैया को, मेरी भाभी को बालक हुआ है। तो वो बीच रात में उठी, भाग भाग के आई, धड़ाड़ धड़ धड़ धड़, बाबा भैया क्या कर रहे हो, उठो, तुम्हारी पत्नी को, मेरी भाभी को बालक हुआ है। फिर वो भागी जहां प्रसूति गृह है और उसकी आवाज से सब लोग जग गए और देखे तो क्या, उसके पहले ही वसुदेव आते हैं और सब लोग सो रहे हैं। यशोदा की गोद में एक पुत्र है सुंदर नीला सा और एक कन्या है। वसुदेव जी जैसे ही उस बालक को वहां रखते हैं, तो वो जो बालक उनके हाथ में है, वो उस बालक में विलीन हो जाता है, यानी कि दो जो है वो एक हो जाते हैं, यानी ऐश्वर्य कृष्ण जो है वो माधुर्य कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। और फिर उसको वहाँ छोड़ते हैं और वो कन्या को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद में स्वप्न आता है, उसके बाद में भाग भाग के आती है। हाँ, अब आगे सुनिए। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, देयर आर नोट्स इन डिफरेंट बुक्स, सो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी। जय हो श्री राधे श्याम। कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। सो उस समय क्या हुआ कि यशोदा का जो पहला दर्शन था अपने बालक का, यशोदा कहते हैं स्तंभित हो गई अपने सुंदर बालक को देखकर। इतना तेज, इतना सौंदर्य, उसके स्तनों से दूध की नदियां बही। और फिर उसने एक ब्राह्मणी को, रोहिणी देवी थी वहां पर, रोहिणी देवी ने पर्दा लगा दिया और एक ब्राह्मणी को, जो वृद्ध तपस्वी ब्राह्मणी थी, उसको नंद बाबा के पास खबर के लिए भेज दिया। तो कहते कि वो इतने आनंदित थी कि वो जब जा रही थी नंद बाबा के कक्ष में, तो सारे रास्ते को उसने आनंद से भर दिया और नंद बाबा को उसने जाकर खबर दी कि आपको पुत्र प्राप्ति हो गई है। तो उसने ना उपनंद बाबा को कहा, नंद बाबा ने, कि अभी इस समय जितनी गाय दूध दोहने के लिए रेडी है वो सारी गाय इसको दान कर दो। और सारी खड़ी थी जितनी गाय दूध के लिए देने के लिए, वो सबको उस ब्राह्मणी को दान कर दिया। और फिर नंद बाबा आए हैं और नंद बाबा ने प्रथम अपने बालक का दर्शन करने के पहले सारी गोपियां, प्रभावती, सभी जो बड़ी बड़ी गोपियां, वो पर्दा बंद करके वहां खड़ी है। कहते पहले हमें आश्वासन दो कि हम आप हमें अलंकार भेंट वस्तु देंगे, गिफ्ट देंगे, तभी बालक का दर्शन देंगे। तो वो प्रॉमिस करते हैं आपको जो चाहे वो देंगे, बालक का दर्शन कराओ। तो पर्दा खोल के बालक का दर्शन करते हैं। कहते नंद बाबा स्तंभित हो गए, ही बिकेम स्टंड विद द ब्यूटी, और वात्सल्य के प्रभाव से एकदम दिग्मूढ़ हो गए वो। और जो जो खड़े थे वो सबको उन्होंने गले की माला, अंगूठी सब उतार के सबको भेंट में दे दिया आनंद से। उसके बाद में नंद बाबा ने नंदोत्सव आरंभ किया। तब तक तो किसको पता नहीं था ना, रात में जन्म हुआ था तो रात भर चलता रहा ये, फिर वो वसुदेव आए, बहुत समय गया बीच में। जब दिन आया तो सबको खबर मिली कि नंद की, हाँ नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब जगह आनंद हो गया। सब लोग सज धज के आने लगे। गोपियों ने फूलों से अपने आप को सजाया, सुंदर वस्त्रों से, अलंकारों से सजाया, ग्वाल बालों ने पगड़ी पहनी, पटका लगाया, फेटा पहना, वह उत्तरी वस्त्र लिया, सुंदर सुंदर अलंकार पहने और हाथ में मिठाइयाँ, वस्तुएं और शगुन की चीजें लेके भागने लगे। कहते नंद गांव गोकुल में जितने भी नंद भवन के रास्ते थे, जहां सब जगह लोग आ रहे थे, लड़कियां, औरतें, आदमी, वो सब फूलों से भर गए, क्योंकि वो इतने उत्सुक होकर भाग भाग के आ रहे थे, सब उनके फूल गिर रहे थे। तो पूरा नंद भवन का जो रास्ता था सभी फूलों से भर गया था। सब सूप में, हाथ में हल्दी, कुमकुम, सुंदर सुंदर वस्त्रों लेकर आने लगे। तो उतने में सतर्क हो गए यशोदा, अरे मेरा इतना सुंदर चांद सा बालक, इतना सुंदर, उसका सौंदर्य कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा बालक का दर्शन करेंगे लोग तो उसको नजर लगेगी, तो मैं किसी को लाला को नहीं दिखाऊंगी, उसको पूरा ढक देती हूँ। उतने में सब नंद भवन पहुंच जाते हैं। अरे यशोदा दीदी, हमने सुना आपको बालक हुआ है, दर्शन कराओ दर्शन कराओ। अरे मैं नहीं कराऊंगी दर्शन आपको, क्योंकि आपके नजर लगेगी। तो वो कहते हैं कि देखो देखो, हमारा सुपड़ा खोल के देखो, इसमें नजर लगने वाली वस्तु नहीं, नजर उतारने की वस्तु लेके आए हम। इसमें रोन लो नो लो क्या कहते हैं उसको, राई और लोन, ये सब हम लेके आए, तो दिखा दिए। लेकिन भगवान को रहा नहीं जाता है कि मेरी भक्त सब गोपियां देखने आ रही है। तो भगवान क्या कहते हैं ना, तो थका हुआ है ना, तो पैर बाहर निकाल लेते थे। पैर जैसे बाहर निकाल रहे, सब गोपियां चरण छूती है, और जैसे चरण छू रहे, आशीर्वाद दे रहे, तब तक वो मुंह बाहर निकाल लेते और अपने मुख कमल का दर्शन देते। यशोदा देखते हैं उनके सभी सुपड़ों के अंदर नजर उतारने की वस्तुएं हैं, तो सब लोग भगवान के नजर उतारते हैं, सभी गोपियां। आज भी ब्रज में ऐसा भाव है कि भगवान, वो कहते हैं कि देखो आप कुछ मांगना नहीं मेरे बालक से, होते हम केवल आशीर्वाद देने आए हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को। आज भी ब्रज में भाव है कि भगवान से ब्रज में कोई कुछ मांगता नहीं है। ऐसे कई मंदिर है जहां पर पुजारी बाहर ही बैठे रहते हैं, बोले अंदर जाना है, कुछ मांगना नहीं, आशीर्वाद देकर आना हमारे लाला को, ऐसा भाव है वहां पर। तो उसी भाव से सब गोपियां वहां पर आई थी, बोले तेरे लाला जुग जुग जिए, सब विश्व को आनंद दे, कल्याण करे विश्व का, ऐसे वो उनको वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद में नंद बाबा जो है ना, वो 7 पर्वत बनाते हैं धान्य के, 7 पर्वत बनाते हैं वेरियस ग्रेन्स, और उस पर्वत का शिखर जो है वो रत्नों से भर देते हैं। सात पर्वत के, और वो सारा जो धन है वो सब लोगों को बांट देते हैं। और फिर क्या है, वो कहते ना हाथियों अपना गायों का दान दे रहे हैं, बैलों का दान दे रहे हैं, बछड़ों का दान दे रहे हैं, हाथी का दान दे रहे हैं, घोड़े का दान, सब दान दे रहे हैं। तो वो समारोह में सारे देवता लोग आते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, गणेश, सब लोग आते हैं। और कैसे छोटे गणेश जी को लेकर भवानी भेष बदल कर आई हुई है, और नंदी को लेकर शिव जी आए हुए हैं, और इंद्र भगवान ब्राह्मण बनकर आए हैं, सब लोग भेष बदल कर आए। वो यशोदा देवी देख रही है ये सब लोग जो है ना वो मेरे राज्य के नहीं है, क्योंकि अपने हर व्यक्ति को जानते थे वो, अपनी प्रजा को। तो वो देख रहे हैं कि ये मेरे राज्य के नहीं है, सब डिफरेंट लोग हैं। लेकिन वो कैसे पूछे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, पूछ नहीं सकते हैं। तो जब नंद बाबा बैल गाय का दान करना शुरू करते हैं, तो हमारे शंकर भगवान अपने नंदी का पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, ये सब होलसेल दान में मेरा नंदी भी जाएगा तो कैसे चलेगा, तो उसको पूंछ पकड़ के खड़े हैं। उसके बाद में वो जब हाथी का दान शुरू होता है ना, तो तुरंत भवानी देवी अपने गणेश जी को गोद में ले लेती है, अरे मेरे इसको भी दान करेंगे तो कैसे चलेगा, तो उसको लेके खड़े हैं। ऐसे कई सारे प्रसंग हुए इस समय। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ना सब लोगों ने आनंद में ऐसे मक्खन के गोले उड़ाए सबके ऊपर कि नंद भवन के आंगन की मोरियां सब लॉक हो गई, और ऊपर से वो डाल ही रहे दही दूध का वर्षाव कर रहे हैं, तो कहते कमर तक दही दूध हो गया, और सब ग्वाल बाल नाच रहे हैं उसके अंदर। तो सब ग्वाल बाल कहते हैं नंद बाबा आपको ही नाचना पड़ेगा। बोले मुझे नाचना नहीं आता है, मैं तो बहुत उम्र वाला हूँ, नहीं नहीं नाचना तो पड़ेगा ही, तो अभी मैं नहीं नाचूंगा, नहीं नाचना तो पड़ेगा। तो क्या करते हैं, बड़ा ना वो फेटा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, सर को बांधने का पटका होता है ना लंबा, उसको खोल देते हैं और उसको पेट को एक चक्कर लगाते हैं, एक एंड यहाँ देते हैं, एक एंड यहाँ देते हैं, और फिर वो लोग ऐसा खींचते हैं तो नंद बाबा गोल 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 घूम रहे हैं। मतलब समुद्र मंथन ही हो गया उस समय, नंद बाबा मंदार पर्वत बन गए। और कैसे गोल गोल घूमता है ना रवि अपना मंथन करते समय, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, सब ग्वाल बाल तालियां बजा रहे हैं। इस तरह से नंद बाबा के आंगन में समुद्र मंथन हुआ, लेकिन समुद्र मंथन में उसके बाद में अमृत का जन्म निर्माण हुआ था, और यह समुद्र मंथन के पहले ही रत्न जो है अमृत में रत्न का जन्म पहले ही हो चुका था। इस तरह से कहते हैं कि नंद भवन में 6 महीने तक नंदोत्सव चला, किसी को पता ही नहीं चला दिन हो रहा है कि रात हो रही है कि दिन हो रहा है, कि इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। और जब 6 महीने के बाद उनको होश आया, और 6 महीने के बाद वाला सूर्य अस्त होने लगा, तो सब लोगों ने दिल भर के ब्रह्मा को गाली दी कि ब्रह्मा तो बूढ़ो है, गो है, इसकी अकल मारी गई है, ये सटिया गया है, उसको समझ में आ रहा है कि वो केवल आज के दिन तो कम से कम देर से सूरज को अस्त करना चाहिए ना, उतनी भी उसको अकल नहीं है, जरूर बुढ़ा हो गया है। ये कब कह रहे हैं, वो 6 महीने के बाद में कह रहे हैं। और 6 महीने के बाद में जब अस्त हो गया तो नंदोत्सव समाप्त हो गया। वहां जब जन्म कृष्ण का हुआ, तो वसुदेव ने मन में 2 लाख गायों को अलंकार धारण करवा के मन में ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसका मतलब अगर आपके पास संकट है, कुछ साधन नहीं है, कुछ अपने पास कुछ प्रोविजंस नहीं है, फिर भी मन में हम भगवान का पूजन कर सकते हैं। मन में आप रत्न जड़ित कटोरियां, रत्न जड़ित प्लेट्स, चमचे, ग्लास में अनंत व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। गरीब से गरीब फटीजर व्यक्ति भी कर सकता है, रस्ते पर बैठकर अपने भीख मांगने की जगह पर बैठकर भगवान को रत्नों की थाली में भोग लगा सकता है, और भगवान उस भावना को स्वीकार करते हैं। तो जेल में अभी है, उसके पास बहुत धन है, लेकिन वो जेल में क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जन्म के शुभ अवसर पर वसुदेव ने मन में 2 लाख गाय दान कर दी। यहां पर नंद बाबा प्रत्यक्ष दान कर रहे हैं। तो कहते हैं 6 महीने बाद जब भी, फिर बाद में जब भी साल होने का समय आया, तो जब प्रथम सालगिरह का समय आया, तो यशोदा देवी को याद आया कि षष्ठी पूजन तो हुआ ही नहीं। बालक के जन्म के 6 दिन के बाद षष्ठी देवी का पूजन होता है, जिसको कुआं पूजन भी कहते हैं ब्रज में, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है वो। तो ये इतना बड़ा विधि चला नंदोत्सव का, किसी को याद नहीं रहा। जब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने का समय आया, तो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी में उन्होंने छठीकरा में जाकर षष्ठी पूजन किया, ताकि षष्ठी पूजन के बिना पहले साल के लिए मना नहीं सकते, इसलिए यशोदा देवी ने जल्दी जल्दी में षष्ठी पूजन किया, इसलिए गांव का नाम पड़ा छठी करा या षष्ठी करा। हरे कृष्णा, ऐसा ब्रज में हर एक जगह का सुंदर सुंदर नाम है। हमारे पास कितना समय है, 8 तो बज गए अभी, क्या लोगों का विचार है बताइए, वैसा हम सेवा करेंगे। एनीवेज, तो एक थोड़ी सी कथा तो बता ही देते हैं आपको। उसके बाद में ये जो वर्णन है ना, ये कई जगह अलग प्रकार के दिए हैं। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये 6 महीने का वर्णन नहीं दिया है। उसके 6 दिन के बाद ही पुत्र आए थे, तो 6 महीने का वर्णन कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ यह है कि अलग अलग कल्पों में जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो विविधतापूर्ण लीला करते हैं। किसी कल्प में उन्होंने कालिया के ऊपर पक्षी बनाकर सैर किया है देवता लोक का, किसी किसी में वापस बुलाकर उस पर रासलीला रचाया है। हाँ, किसी किसी कल्प में भगवान जब आए तो कालिया का मर्दन किया, फिर सब लोग चले गए, वापस उन्होंने गोपियों को लाकर कालिया को दोबारा बुलाया, तभी कालिया भक्त बन चुका था, तो उसके फन पर उन्होंने रासलीला रचाई। ऐसे भी है, मतलब ये सब अलग अलग कल्प भेद कहते हैं उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर वसुदेव ने, वसुदेव जानते थे कि हमारा बालक ही माँ गया, हमारा बलराम जी का भी जन्म हुआ है, तो फिर वो गर्ग मुनि को भेजते हैं। तो गर्ग मुनि जो है वो नामकरण करने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप ना ओपन में नामकरण मत करना उनका, क्योंकि ओपन में करेंगे तो कंस को पता है कि गर्ग मुनि मेरे पुरोहित हैं, तो अगर वो किसी बालक का नामकरण कर रहे हैं मतलब वो इनके ही बालक वहां भेजे गए हैं चोरी चोरी, तो वही होंगे, ये पहचान जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बुलाएंगे, मैं मतलब नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी और उनके दो पुत्र कृष्ण बलराम, बस इतने, इसके सिवा आपके साथ में गौशाला में कोई नहीं रहेगा। तो नंद बाबा सबको लेके गौशाला में गए। यशोदा ने कहा, अरे बड़ा पंडित आया है मथुरा से, वसुदेव जी का बड़ा कुल पुरोहित है, बड़ा ज्ञानी है सुना है, थोड़ा ज्ञान की परीक्षा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, यशोदा देवी बलराम जी को गोद में लेते हैं और रोहिणी कृष्ण को गोद में लेते हैं और कहते हैं, बताओ बताओ हमारे बालक का भविष्य बताओ। तो गर्गमणि आंख बंद करके ध्यान करते हैं, जो रोहिणी के गर्भ गोद में बैठा है वो कृष्ण है, यशोदा का बालक है, और जो यशोदा के बालक गोद में बैठा हुआ है वो रोहिणी का बालक बलराम जी है। ऐसे बताते तो तुरंत बालक एक्सचेंज कर देते, बोले ये तो बहुत बड़े त्रिकालदर्शी ज्ञानी पंडित हैं। फिर वो उनका वर्णन सुनते ध्यान से, और उसमें कहते हैं कि ये बालक जो है ये कई जन्म तक अवतार ले चुका है, यही राम है, यही नरसिम्हा है, और सब वर्णन करते हैं, कहते हैं एक दिन आकर ये, इसका नाम गिरिधारी होगा, ये गिरिधार पर्वत को उठा लेगा। और फिर बलराम जी का वर्णन करते हैं, ये बल का स्वरूप है, ये सबको आनंद देने वाला है, इसका नाम बलदेव बलराम होगा। और इस तरह से गौशाला में नामकरण विधि होता है। उसके बाद में कृष्ण भगवान जो है वो धीरे धीरे रेंगना आरंभ करते हैं। मणिमय आंगन नंद के खेलते दो भैया, दोनों भैया जो है वो उनके आंगन में रेंगने लगते हैं। रेंगते रेंगते यशोदा माई, रोहिणी माई बैठी हुई है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे, कैसे रेंग रहे हमारे आंगन में। हाँ, वो कहते हैं रुन झुन बाजे, उनके पैर में जो घुंघरू बन लगा है ना वो ठोक ठोक के बजा रहे उसको। यशोदा कह रहे, देखो देखो मैं चलना सिखा रही हूँ लेकिन सीख ना रहे, केवल वो ठोक रहे हैं, उसी की आवाज़ से रीझ रहे हैं, उसी की आवाज़ से उनको आनंद आ रहा है। और वो फिर आकर चलाना शुरू करते हैं, तब अरे चल 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 लाला चल, लेकिन वो ठुक 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 रहे क्योंकि वो उसको आवाज़ से बड़ा आनंद आ रहा है। फिर छोड़ देते, फिर बैठ जाते हैं। फिर वो जाके, छोटे से बालक है, बड़े गोपाल हैं, तो एक गोपाल वहाँ आते तो उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसके कुर्ता को पकड़े खड़े हो जाते हैं, और पता चलता है कि ये कुर्ता पकड़ने वाले व्यक्ति जो है वो नंद बाबा नहीं है, कोई और है, तो डर के भाग कर नंद यशोदा के गोद में आ जाते हैं। फिर थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। ये लीला जो है वो राधा रानी के विषय में भी हुई है, बलराम के विषय में हुई है, कृष्ण के विषय में हुई है। ये एक मुनि है, वो कहते हैं कि मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैं नंद महाराज का पूजन करता हूँ, क्योंकि साक्षात गौलोकेश्वर परब्रह्म जो है वो बालक बनकर इनके आंगन में रेंग रहे हैं केवल इनको प्रसन्न करने के लिए। तो वो कितने महान होंगे जिसके लिए परम भगवान जो है वो बालक बनकर रेंग रहे हैं। ही इज क्रॉलिंग एट द कोर्टयार्ड ऑफ दिस पर्सन, आई वर्शिप हिम एज सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो उसके बाद में थोड़ा बड़े होते हैं ना, तो वो ऊपर नंद भवन में खड़े हैं बालक लोग, तो बालक को ना हमेशा सीढ़ी उतरने का बड़ा शौक रहता है, पता है ना आपको, हमेशा रहता है। अभी वो उस समय की जो सीढ़ियाँ थी वो इन बालक के कमर के नीचे जितने पैर की लंबाई है उससे वो सीढ़ियाँ लंबी लंबी है। तो जब पहली सीढ़ी से उतरने का प्रयास कर रहे हैं तो पेट के यहाँ पर वो अटक कर लटक जाते हैं और उनका पैर जो है वो दूसरी सीढ़ी को लगता नहीं है, समझ में आपको आया, उनके पैर ऐसे ऐसे हैं और ये सीढ़ी यहाँ तक है तो ऐसे लटक रहे हैं वो पेट के, थोड़ा पेट बड़ा है तो पेट वो अटका हुआ है पहले सीढ़ी पे और लटक रहा है और वो परब्रह्म झूल रहा है पेट के बल पर। नारद मुनि वहां से आते देखते, अरे कितनी सुंदर बात है, जिनका जिनका मैं पूजन करता हूँ वो बालक बनकर यहाँ पर लटक रहे हैं, और तुरंत रोने लगते हैं। तो आचार्य बताते, खुरू क्यों रोए हो? वो कहते हैं, देखो इतना भाग्यशाली सीन है, इसको देख के ही सब दुख भग जाएंगे, लेकिन वो देखो योगी ध्यानी तपस्वी नाक बंद करके प्राणायाम कर रहे हैं, उनको कहाँ दर्शन हो रहा है इसका, कब होगा दर्शन? अपनी सांस को दबाकर भगवान को रियलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे होगा इनका? वो करुणा से रो रहे हैं और उनको देखकर आनंद भी ले रहे हैं। ऐसे भगवान ने नंद भवन में बहुत आनंद दिया, बहुत अनंत आनंद दिया। उसके बाद में गौशाला में गए, उनको सजा धजा कर पीताम्बर पहनाकर चंदन अगरू का लेप करके मोर मुकुट पहना के बहुत सुंदर श्रृंगार करके मणियों की माला पहना के भेज दिया। तो ये जाकर बछड़ों का पूछ पकड़ते हैं और बछड़े पीछे से डर जाते हैं और भागने लगते थे, ये पूछ छोड़ते नहीं है तो ये पेट के बल पे गिर जाते हैं। और वहाँ पर क्या है, गोबर गौमूत्र का मिश्रण है एकदम चिकना सा, उस पर पूरा गौशाला में भाग रहे हैं। बलराम कृष्ण जो है बछड़े की पूछ पकड़ कर पूरे गौशाला में घूम रहे हैं। तो यशोदा और रोहिणी देख रही है आंखों से आंसू लेकर, यशोदा दीदी भाग कर आओ देखो देखो कैसे हमारे भाग के आते, देखती है दोनों बालक कैसे गौशाला में आनंद ले रहे हैं, आंखों से आंसू लेकर उसका दर्शन करते हैं। चंदन अगुरु का सुंदर श्रृंगार तो किया है, उसके ऊपर गोबर गोमूत्र का भी श्रृंगार किया है। भगवान बता रहे हैं कि मेरे लिए अलंकार है, गाय का गोबर और गोमूत्र जो है मेरे लिए अलंकार है। हर दिन प्रतिदिन उन्होंने इस अलंकार को धारण किया, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से। इस तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं वो जीव का परम कल्याण करने वाली है, परम 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 कल्याण करने वाली। तो आचार्य लोग कहते हैं कि इन लीलाओं को श्रवण करते समय, श्रवण करते समय ही भगवान के लीलाओं का पूजन भी करना चाहिए साथ साथ में। यू हैव टू वर्शिप द लीला ऑफ द लॉर्ड व्हाइल यू आर हियरिंग इट। उससे हमारे लिए सबसे अधिक आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त होंगी। अगर हम भगवान के लीलाओं को मनोरंजन के रूप में देखेंगे और एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो वो साध्य नहीं होगा आध्यात्मिक उन्नति और साक्षात्कार जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि भगवान की लीला सुनते समय, सुनते सुनते ही वो क्या कहते हैं, विथ ऑ एंड रेवरेंस, पूरे गौरव के साथ में उसका श्रवण करना चाहिए। तब जाकर उस लीलाओं का प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप अंदर प्रवेश करके हृदय की शुद्धि हो जाती है और भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो समय हो चुका है, जितना समय दिया गया था। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, वो बता ही दूंगा मैं। वो ये है कि एक नाम था भगवान का फिसल चंद्र। तो सब लोग प्रश्न बोले, क्या नाम है भगवान का? राधा रानी भी कृष्ण को पूछ रही है क्या नाम है। तो कृष्ण भगवान राधा रानी को कहानी बताते हैं। एक किसान था, वो बहुत अपने किसान करने में बहुत बिजी था। तो एक साधु मिल गया उसको, तो उसने कहा कि भगवान का नाम लो। तो कहते महाराज जी कहाँ समय है, दिन भर देखो बिजी रहता हूँ। तो बोले कुछ नहीं, जब काटते हो, फसल लगाते हो, कुछ करते हो, रोज जोतते हो, तभी कृष्ण चंद्र ये नाम बोलते रहना। तो बोला ठीक है करूँगा मैं। तो उतने में उसकी बीवी आते रोटी लेकर, प्रभु जी सुनिए, राधे राधे, बीवी रोटी लेके आती है। तो रोटी जब ले देती है तो वो कहते हैं कि अभी ये नाम तुम लो, तब मैं रोटी खाता हूँ। तब तक वो कृष्णचंद्र पुकारती रही। और जब समाप्त हो गया भोजन करके, तो अभी तुम लो, तो इसने क्या बोल सुना, फिसल चंद्र, कृष्णचंद्र, फिसल चंद्र, ऐसे करके मिक्स कर दिया। और उसके बाद में वही बोलने लगा, फिसल चंद्र। तो राधा रानी पूछ रही, ये क्या नाम है? तो बोले जाओ पूछो उसको ही। तो राधा रानी कोई गोपी बनकर नीचे आती है और पूछती, ये क्यों बोल रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? तो उसको थोड़ा गुस्सा आ जाए, मैं तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूँ। तो राधा रानी बड़ी नाराज हो जाती है, ऊपर आ जाती है, ऐसे बोल रहे हो? तो सही तो है, हम तो आपके पति हैं। तो झूठ थोड़ी बोला, अभी बताओ मुझे इसका कारण क्या है। तो कहते हैं कि जब मैं बचपन में मेरी माँ मेरा श्रृंगार करती थी, तो श्रृंगार करके तुरंत पूर्ण होने के बाद ही मैं फिसल कर गोबर में गिर जाता था। तो उसने कहा, अरे तू तो फिसल चंद्र है, तब से मेरा नाम फिसल चंद्र पड़ गया। तो ये जो बोल रहा है ये सही नाम है, गलत वो अपभ्रंश नहीं है इसके जीवा का। तो इस तरह से हमारे भगवान जो है वो अपने आनंद में फिसल जाते हैं गौशाला में जाकर। तो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारी प्रार्थना यही है कि ये जो भगवान यशोदा की गोद में प्रकट हुए, देवकी के गोद में प्रकट हुए, कंस के कारागृह में प्रकट हुए, नंद भवन में प्रकट हो गए, वो हमारे भी हृदय में प्रकट हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, इसी भावना से कि ये जो बाह्य अवस्था में दिख रहे हैं वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो प्रकट हो जाए। लेट इट मैनिफेस्ट इन द हार्ट। इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और ये प्रयास जब हम प्रार्थना पूर्वक करते हैं तो हो सकता है एक दिन उनकी इच्छा से वो अपना अपने हृदय में प्रकट हो जाए। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।